شب بخیر دوستوں، اگر آپ بہتر محسوس کریں تو آئیں ہم سب چند لمحے دعا کے لیے کھڑے ہو جائیں۔
اے ہمارے آسمانی باپ، آج رات ایک مرتبہ پھر ہم اس مقدس جماعت میں خداوند کی خدمت کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اور تو نے وعدہ کیا ہے کہ جہاں بھی ہم دو یا تین تیرے نام سے اکٹھے ہوں گے تو ہمارے درمیان ہوگا، اور چونکہ ہم اس کے نام سے جمع ہوئے ہیں اس لیے ہمیں پوری تسلی ہے کہ تو ہمارے درمیان ہے۔ اے باپ، ہم دعا کرتے ہیں کہ آج رات تو ہمارے درمیان آئے گا اور اس دوسری مہر کو ہمارے لیے کھول دے گا، اور جس طرح شاعر نے کہا ہے کہ وہ گزرے وقت کے پردے کے پیچھے دیکھنا چاہتا ہے، اے خداوند ہماری بھی خواہش ہے کہ ہم بھی گزرے وقت کی طرف نگاہ کر کے دیکھیں کہ آگے کیا ہونا ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ ذبح کیا ہوا برا اب ہمارے درمیان آ کر مہر کو کھولے اور ان باتوں کو ہم پر عیاں کرے جن کو دیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اے خداوند، یہاں کچھ ایسے لوگ ہیں جو مسیح کے گرد اس عظیم رفاقت میں ابھی داخل نہیں ہوئے ہیں، ہم التماس کرتے ہیں کہ آج رات وہ ابدی فیصلہ کریں اور خدا کے روح سے معمور ہو جائیں۔ اے باپ، اگر یہاں کوئی بیمار ہے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ تو ان کو شفا بخش دے، یہاں بہت سے رومال پڑے ہیں، جب میں ان پر ہاتھ رکھتا ہوں تو اس سے مجھے بائبل میں مقدس پالوس کی یاد آتی ہے کہ کیسے لوگ اس کے بدن کے ساتھ رومال اور پٹکے چھوا کر لے جاتے تھے اور ناپاک روحیں لوگوں کو چھوڑ دیا کرتی تھی اور وہ شفا پا جاتے تھے۔ ہم خداوند کی آمد کو قریب آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ وقت نزدیک آ رہا ہے، اور یہ باتیں 1900 سال بعد پھر کلیسیا میں واپس آ چکی ہیں۔ اے باپ، ہم دعا کرتے ہیں کہ جن باتوں کی ہم نے درخواست کی ہے وہ تو ہمیں عنایت کر، اپنے خادم کو مضبوط کر، اور اے خداوند اپنے خادموں کی ہر جگہ مدد کر، اور بالخصوص ہم جو جماعت کے طور پر آج رات یہاں موجود ہیں، ہمیں اس قابل بنا کہ کلام کو قبول کر سکیں۔ ہم یہ یسوع کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ یقیناً آج رات خداوند کے گھر میں واپس آنا اچھا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اس کا مجھے افسوس ہے، لیکن اس کے متعلق ہم مشکل ہی سے کچھ اور کر سکتے ہیں۔ ہم نے ابھی ابھی چرچ کی عمارت کو بڑھایا ہے، اور اس میں 300 یا 400 اشخاص کو مزید بٹھا سکتے ہیں، لیکن اس قسم کی خاص عبادتوں میں کچھ زیادہ ہی لوگ ہو جاتے ہیں۔ اب میرا دعا کرنے اور ان موروں کا مطالعہ کرنے میں نہایت ہی عمدہ وقت گزر رہا ہے، مجھے امید ہے کہ آپ سب کا بھی عمدہ وقت ہے، مجھے پورا یقین ہے کہ یہ اس طرح ہے۔ اگر آپ اس کو اسی قدر اہمیت دیتے ہیں جتنی کہ میں، تو یقیناً آپ بہترین وقت گزار رہے ہیں۔ میری ایک اور عبادت کے بعد میں اپنی ایک خاص دوست کو بلانا چاہتا ہوں، اور آج اس کا جنم دن ہے، آج وہ 12 برس کی ہو گئی ہے، اور وہ میری بیٹی سارا ہے، اور پھر اس کے بعد مجھے ایک اور نام پکارنا پڑے گا کیونکہ اگلے 2 دن بعد بیکی کا جنم دن ہے۔ اور اب آج رات ہم اس دوسری مہر کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور پہلی 4 مہروں میں 4 گھوڑسوار ہیں، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج پھر کچھ واقعہ ہوا، اور میں نے کچھ لیا، میں نے جا کر ان پرانی تحریروں کو لیا جو میرے پاس تھی، جن پر میں نے کافی عرصہ پہلے منادی کی تھی۔ میں وہاں بیٹھ گیا اور میں سوچنے لگا، ٹھیک ہے، جس قدر بہتر کام میں کر سکتا تھا میں نے کیا، اور بہت سے مصنفوں کی تحریریں اور دوسری چیزیں موجود تھیں، اور میں نے سوچا کہ بہتر ہے میں ان کو تھوڑی دیر کے لیے پڑھوں اور ان پر غور کروں اور ان کا مطالعہ کروں۔ اور پہلی چیز جو آپ جانتے ہیں کہ اچانک کچھ واقعہ ہوا، کیونکہ یہ سب کچھ مختلف تھا اور یہ بالکل مختلف طریقے سے ہوا۔ پھر میں نے جلدی سے پینسل پکڑی، اور جب تک وہ وہاں موجود رہا میں جتنی تیزی سے لکھ سکتا تھا لکھنا شروع کر دیا۔ تقریباً 1.5 گھنٹہ ہوا کہ کچھ وقوع میں آیا۔ چند منٹ پہلے آتے وقت میں بائی ووڈ کو اس کے بارے میں بتا رہا تھا، آپ جانتے ہیں کچھ ہوا۔ آپ جانتے ہیں کہ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ ان کا ذکر نہیں کر سکتے، آپ بہتر جانتے ہیں، مگر کچھ ایسی بات وقوع ہوئی جس نے میری مدد کی۔ یہاں عمارت میں کہیں میرا ایک دوست ہے، بے شک آپ سب میرے دوست ہیں، وہ بھائی भाई लीवेल है। वो एक बेश कीमत भाई और कलाम का एक हकीकी तालिब इलम है। डॉक्टर वेल रुल्कदुस से ममूर बैप्टिस्ट भाई है और वो एक, मैं ये अल्फाज उनकी तारीफ के लिए नहीं कहता बल्कि इसलिए कि मैं इस बात को मानता हूँ, मैं समझता हूँ कि वो हमारे दरमियान एक सुलझा हुआ तालिब इलम है जिसे मैं जानता हूँ। उसने एक छोटा सा नोट लिखकर बिली के जरिए मेरे पास भेजा था, लेकिन बिली उस वक्त किसी मुश्किल के सबब से मुझ तक ना पहुंच सका था और मेरे ख्याल में मैंने उसे पूरा नहीं पढ़ा, लेकिन मैं वही बताने जा रहा था जो कुछ उन्होंने कहा था। भाई वेल, अगर आप यहाँ हैं तो सुने, मैंने इसे पढ़ा था, मैंने इसे 6 माह कबल पढ़ा था। उसने कहा, मैं वसूख के साथ नहीं कह सकता भाई बिल, मैं वसूख से नहीं कह सकता, लेकिन मेरा ईमान है कि पॉलीकार्प मुकद्दस योहन्ना का शागिर्द था। ये दुरुस्त है, वो था।
I think Irenaeus was a student of Polycarp. That's correct, exactly. Irenaeus said.
मेरा ख्याल है कि Irenaeus पॉलीकार्प का शागिर्द था। ये बिल्कुल दुरुस्त है। Irenaeus ने कहा, जब मसीह के बदन का आखिरी चुनेदा शख्स अंदर दाखिल होगा, तो फिर यीशु आ जाएगा। ये बात Irenaeus ने मसीह की वफात के तकरीबन 400 साल बाद कही। उसने कहा, जब ये आखिरी जमाना आएगा, अब ये बात प्री नासी काउंसिल में हुई थी। आप लोग जो यहाँ हैं, इसका मुतालिया करें, कलाम का मुतालिया करें और इस बात का मुतालिया करें, मेरा मतलब है कि बाइबल की तारीख का मुतालिया करें, तो आप इस बात को प्री नासी काउंसिल में पाएंगे। मेरा ख्याल है कि ये पहली या दूसरी किताब है जहाँ आप इसे ढूंढ पाएंगे। अब उसने ये बात कई साल पहले देखी और उसने कहा कि आखरी चुनिंदा जो कि बरगजीदा है। लोग समझते हैं कि चुनाव एक ऐसी बात है जो इन आखिरी दिनों में कोई नई बात निकाली गई है, मेरे खुदाया। लेकिन चुनाव और बुलाहट कदीम तालीम है जो कि हमारे पास है। इसलिए Irenaeus भी यकीनन मानता था, बल्कि कलाम के हकीकी तालब इलम हमेशा चुनाव को मानते हैं। और इसलिए Irenaeus कलीसियाई जमानों के फरिश्तों में से एक फरिश्ता था, जैसा कि हमने मुतालिया किया था और देखा था। हम ईमान रखते हैं, बेशक अब ये सब भेद थे। आप गौर करें, ये सब भेद ठीक इन मोहरों के अंदर पोशीदा हैं और इन्हें आखिरी दिनों में अयां होना है। ये कैसे पालूस और Irenaeus और मार्टन वगैरह से शुरू हुए और इन आखिरी दिनों तक आए, और अब हमें यकीन है कि खुदावंद आज रात हमारी कोशिशों में हमें बरकत बख्शेगा। अब हम, बल्कि मैं यकीनन पहली मोहर से लुत्फंदोज हुआ हूँ और पहली मोहर के जरिए मुझे भी बरकत मिली है। और अब मैं आपको ज्यादा देर नहीं बिठाना चाहता, लेकिन आप जानते हैं कि जब यह खत्म हो जाएगी तो इसके बाद मुझे एक मरतबा फिर चंद रातों के लिए बाहर जाना है, और उस घड़ी तक हमें एक किस्म की तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी। और मैं सबकी हौसला अफजाई करता हूँ, और मैं भाई जूनियर जैक्सन को वहाँ खड़े हुए देख रहा हूँ, और मेरा ख्याल है कि चंद लम्हे पहले मैंने भाई रेडल को भी यहाँ कहीं देखा था, और उन भाइयों को भी और उन बहनों को भी जो कलीसियाओं से आई हैं, और दूसरे लोगों को भी देखा है। हम यकीनन इन सब की हौसला अफजाई करते हैं, और मैं भाई हुपर को देख रहा हूँ जो मेरे ख्याल के मुताबिक वहाँ दीवार के साथ खड़े हैं। वो योटिका की कलीसिया के साथ ताल्लुक रखते हैं, और हम आप सब के अच्छे तावन के लिए आपकी हौसला अफजाई करते हैं। अब देखें, गुज़िश्ता शाम जिस तरह हम हमेशा मोहरों को सीखना पसंद करते हैं, इसी तरह हमने कलीसिया जमानों को भी सीखा था। पिछली मर्तबा पुलपट पर कलीसिया जमानों का मुतालिया करते वक्त मैंने उनके मुतालिक आखिरी दफा बोर्ड पर सिखाया था, तो कितने लोगों को याद है कि क्या वाकया हुआ था। वो ठीक नीचे उतर आया था और रोशनी के अंदर होकर उस दीवार के करीब गया था, और हम सबके सामने उसने खुद उस खाके को उस दीवार पर बनाया था। खुदावंत का फरिश्ता कई सौ अशकास के सामने यहाँ जाहिर हुआ था, और वो अब भी माफूकुल फितरत काम सर अंजाम दे रहा है, और इसलिए हम अजीम बातों की तवक्को कर रहे हैं। हम नहीं जानते, आप उस अजीम घड़ी का मजीद इंतजार करना पसंद करेंगे? हम नहीं जानते कि आगे क्या होने वाला है। आप जानते हैं, हम सिर्फ इंतजार में हैं। अब देखें कि खुदा कितना अजीम है और कितना मेहरबान है, हम उसकी नहायती ताजीम करते हैं। अब देखें, पस्से मंजर के लिए मैं पहली और दूसरी आयत को पढ़ूंगा, फिर हम दूसरी मोहर के लिए तीसरी और चौथी आयत को लेंगे, इसके बाद पांचवी और छठी आयत मैं तीसरी मोहर के लिए लूंगा, और फिर सातवीं और आठवीं में बल्कि दो आयत हर घोड़सवार के लिए हैं। मैं चाहता हूं कि आप गौर करें कि किस तरह घोड़सवार जर्द घोड़े पर सवार होता है। शायद जब वो यहाँ सामने आता है और आगे बढ़ता है तो वो तब्दील हो जाता है। इसके बाद खुदावन ने चाहा तो अगले इतवार की रात आखिरी अजीम मोहर खोली जाएगी। जब ये खुलेगी तो वहाँ ये बात वकू में आती है कि आसमान पर आधे घंटे की खामोशी है। खुदा हमारी मदद करे। अब मैं तीसरी आयत पढ़ूंगा। और जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे जानदार को ये कहते सुना कि आ और देख। फिर एक और घोड़ा निकला, चौथी आयत, जिसका रंग लाल था। उसके सवार को ये इख्तियार दिया गया कि जमीन पर से सुलह उठा ले ताकि लोग एक दूसरे को कत्ल करें। लोग एक दूसरे को कत्ल करें और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। अब देखें, ये एक भेद की बात है। जब जानदार ने यूहन्ना को कहा कि आ और देख, और जो कुछ उसने देखा उसे समझ ना सका, उसने महज एक अलामत देखी और वो अलामत थी। यही सबब है कि उसने कहा आ और देख, लेकिन उसने एक अलामत को देखा जिसे उसने कलीसिया को अलामत के तौर पर दिया ताकि वो उस पर गौर करे जब तक के आखिरी जमाना नहीं आ जाता और फिर वो मोहर खोली जाएगी। अब गौर करें, हर शख्स समझ चुका है कि मोहरें खुलेंगी। क्या आप खुश नहीं हैं कि आप इस दिन में रह रहे हैं? दोस्तों गौर करें, सिर्फ यही नहीं बल्कि पिछले इतवार की सुबह को भी याद रखें, जब हर चीज की बुनियाद सादगी पर रखी गई। समझे? सादा, फ्रोतन, ये इस तरह से है कि लोग पास से गुजर जाते हैं और जानते तक नहीं कि क्या हुआ है। और याद रखें कि हम हर हालत में खुदावंत की आमद की तरफ आंखें लगाए बैठे हैं। और जब हमने, बल्कि मैंने एक बयान दिया था कि ऊपर उठाया जाना भी शायद इसी तरह से होगा। उठाया जाना हो भी जाएगा और किसी को इसका इल्म तक ना होगा। ये बिल्कुल इसी तरह होगा, समझे? और अक्सर आप जरा बाइबल में वापस जाएं और देखें कि क्या ये इस तरह हुआ है, समझे? यहाँ तक कि जब खुदावंद यीशु की आमद का अजीम वाक्या हुआ तो किसी शख्स को उसका इल्म ना हुआ। उन्होंने सोचा कि वो अजीबो गरीब तबीयत का शख्स है। कलीसियों ने कहा वो महज एक जुनूनी है। हम वो वाकई दीवाना है। उन्होंने कहा वो एक पागल शख्स है। हम जानते हैं कि तू पागल है, और पागल का मतलब है दीवाना। हम जानते हैं कि तुझ में बदरू है और उसने तुझे दीवाना बना रखा है, और तू हमें सिखाने की कोशिश करता है। जब तू पैदा हुआ था तो तेरी पैदाइश नाजायज हुई थी। हम बल्कि तू नाजायज तरीके से पैदा हुआ था, और तू हैकल में हम जैसे काहिनों को सिखाने की कोशिश कर रहा है, और वगैरह वगैरह। अच्छा, वो मेरे खुदाया, ये उनकी बेइज्जती थी। और जब यूहन्ना आया जिसका जिक्र यशायाह से लेकर मलाकी के जमाने तक किया जाता रहा, गोया अंबिया उसे 1200 साल बल्कि 712 साल से आता देख रहे थे, और हर एक उसकी आमद की तरफ नजरें लगाए बैठा था, और वो उसके किसी भी वक्त आ जाने की त्वको रखते थे। लेकिन वो इस तरीके से आया और उसने मुनादी की और अपनी खिदमत को पूरा किया और जलाल में चला भी गया। यहाँ तक कि रसूल भी उसको समझ ना सके थे, और उन्होंने उससे पूछा। उन्होंने कहा, अब अगर इब्ने आदम यरूशलम में इन कामों को पूरा करने जा रहा है और कुर्बान होने जा रहा है, तो उन्होंने पूछा, तो फिर कलाम क्यों कहता है कि एलिया का पहले आना जरूर है? यीशु ने कहा, वो तो आ चुका और तुमको उसका पता भी नहीं चला। और उसने ठीक वैसे ही किया जैसे कलाम ने उसके बारे में कहा था कि वो करेगा, और उन्होंने उसके साथ वही सलूक किया जैसा वो चाहते थे, समझे? लेकिन वो इस बात को समझ ना सके, और उसने कहा कि ये यूहन्ना था। और तब हो देखें, उनकी आंखें इसके बारे में खुल गईं। वो यहाँ तक कि जब उसने उस सारे काम को कर लिया और मौजज़ात दिखा दिए, तो उसने उनको बुलाया और कहा, तुम में से कौन मुझ पर बेएतकादी का गुनाह साबित कर सकता है अगर मैंने ठीक वैसे नहीं किया जैसे कि कलाम ने कहा है कि जब मैं जमीन पर आऊंगा और करूंगा, तो मुझे बताओ कि मैंने कहां गुनाह किया है, समझे? वरना अब मैं तुमको दिखाऊंगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए, और फिर देखते हैं कि क्या तुम इस पर ईमान रखते हो या नहीं, समझे? वो उनको बिल्कुल साफ कह रहा था, जब मैं आया हूँ तो तुम्हें मुझ पर ईमान लाना चाहिए। उन्होंने ऐसा नहीं किया। देखिए, वो इसकी बजाय उसको अपनी बातों में फंसाने के चक्कर में रहते थे, लेकिन उसने कहा, तुम में से कौन मुझ पर बेएतकादी का गुनाह साबित कर सकता है, समझे? क्या मैंने वही नहीं किया जो करना चाहिए था। हत्ता के रसूल भी उसके साथ चलते हुए डगमगा गए। हम जानते हैं कि कलाम क्या कहता है, और फिर बिलाखर उन्होंने कहा, अब हम ईमान लाते हैं, हम मानते हैं कि किसी शख्स को तुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तू सब कुछ जानता है। अब मैं जरूर उसका चेहरा देखना पसंद करूंगा। उसने जरूर उनकी तरफ देखकर कहा होगा, अच्छा क्या तुम अब ईमान लाते हो? बिलाखर ये बात तुम पर रोशन हो गई। ठीक है, शायद इस बात को इस वक्त से पहले आया होना नहीं चाहिए था। आप समझे? आप जानते हैं खुदा हर काम दुरुस्त करता है, इसलिए मैं उससे प्यार करता हूँ। लेकिन अब हम अपने जमाने के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए अगर हम इसी पर बात करते रहे तो फिर हम इन मोहरों तक कभी नहीं पहुँचेंगे। और अब देखें, याद रखें कि मेरे पास बीमारों के लिए दुआ की बहुत सी दरख्वास्तें आ रही हैं, और मैं हर वक्त हर दरख्वास्त के लिए जो मेरे पास आती है और रुमालों के लिए दुआ करता रहता हूँ। और अगर हम अगले इतवार की सुबह को आखिरी मोहर को खत्म कर सके और फिर खुदावंद की मर्जी हुई तो हम यहाँ पर पुराने तर्ज की इलाही शिफा की इबादत करेंगे। आपको इल्म है जिसमें आप पूरी सुबह बीमारों के लिए दुआ करने के लिए गुजार सकते हैं, और मुझे पुख्ता यकीन है कि ये एक अजीब शिफाया मीटिंग होगी। समझे? इसके बारे में मैं इस तरह महसूस कर रहा हूँ, आप समझे? और अगर इस तरह ये अजीब नहीं होती तो भी शायद कुछ लोगों के लिए अजीब होगी। समझे मेरा क्या मतलब है? अब देखें, खुदा का फजल किस कदर अजीम है कि उसने इस घड़ी में हम पर अपने वेदों को आश्कारा किया है। अब हम सब का यकीन है कि हम आखिरी दिनों में जिंदगी बसर कर रहे हैं। हम इस बात पर ईमान रखते हैं, और याद रखें कि वेद आखिरी दिनों में खोले जाने हैं, और वो अपने वेदों को और कलाम को किस तरह जाहिर करता है। बाइबल ये कहती है, क्या आप उस मकाम को पढ़ना चाहेंगे जहां उसने ये कहा है? आए जरा इसको खोलें और देखें कि वो अपने वेदों को किस तरह जाहिर करता है। मैं चाहता हूं कि आप आमोस को पढ़ें, आमोस की किताब को खोलें, और मैं चाहता हूं कि आप आमोस के तीसरे बाब की सातवीं आयत को पढ़ें। ठीक है, मैं छठी आयत को भी पढ़ूंगा। क्या ये मुमकिन है कि शहर में नरसिंगा फूंका जाए और लोग ना कांपे, या कोई बला शहर में आए और खुदावंद ने उसे ना भेजा हो? यकीनन खुदावंद खुदा कुछ नहीं करता जब तक कि अपना वेद अपने खिदमत गुजार नबियों पर पहले आश्कारा ना करे। अब आखिरी दिनों में हमारे लिए ये पेशनगोई की गई है कि एक नबी बरपा होगा। अब देखें, हम इस बात से बाखूबी वाकिफ हैं क्योंकि हमारे दरमियान हर किस्म के लोग मौजूद हैं। अब आज रात मैंने इधर उधर देखकर महसूस किया है कि मैं एक ऐसी जगह बोल रहा हूँ जहाँ तालिबिलम बैठे हुए हैं, और इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप मुझे समझें। देखें, आप समझते हैं कि ये टेप पूरी दुनिया में जाती हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप ये बात हरगिज ना सोचें। ना इसका कोई मतलब है कि मैं आपको एलिया के कंबल या चोगे के मजहब का टीका लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, और बाकी तमाम दूसरी बातें जो कि हमारे पास कसीरुल तादाद में है। लेकिन आप जानते हैं कि ये तमाम बातें आने वाली हकीकी बातों की पेशरुई करती हैं कि लोगों का ध्यान एक तरफ लगाएं। क्या आपको इल्म है कि मसीह के आने से पेशतर झूठे उस्ताद और झूठे मसीह उठ खड़े हुए थे? और क्या ऐसा नहीं हुआ था? और क्या जब उन लोगों को मारने का सवाल खड़ा हुआ और वगैरह वगैरह, तो उस वक्त के उस्ताद बल्कि अजीम उस्ताद गमलियेल ने नहीं कहा था कि उन आदमियों से कोई वास्ता ना रखो? अगर ये काम खुदा की तरफ से है तो तुम क्यों खुदा से लड़ने वाले ठहरो? लेकिन अगर ये खुदा की तरफ से नहीं है, उसने कहा, कोई ज्यादा अरसा नहीं गुजरा, क्या एक शख्स उठ खड़ा नहीं हुआ था और अपने साथ 400 आदमियों को बियाबान में नहीं ले गया था? और वगैरह वगैरह, हमारे सामने इस किस्म की बातें होनी है। ये क्या था? उस हकीकी आने वाली चीज की पेशरुई थी। अब देखें, शैतान उनको खड़ा करता है। जिस शख्स की हम बात कर रहे हैं, इसकी होशियारी पर गौर करें, ये शैतान है, और अभी हम इसको ठीक यहाँ पर अयां करेंगे और फक्त कलाम के जरिए इसको नंगा करेंगे ताकि आप देख सकें कि ये कौन है। ये वो बात है जो यहाँ होनी चाहिए। और आप याद रखें, उसने अपने आप को कम्युनिस्ट बनाने या उसमें जाने की कोशिश नहीं की। शैतान ने ऐसा नहीं किया, वो मुखालिफ मसीह है। ये इस कदर मिलता जुलता है कि यस्सू ने कहा, अगर मुमकिन हो तो बरगजीदों को भी गुमराह कर दे। और ये बरगजीदा वही हैं जो इन मोहरों के अंदर छुपे हुए हैं, जिनके नाम बनाए आलम से पेशतर किताब में दर्ज हैं। वो एक चलाक शख्स है। जब वो उस चीज को आते और उबरते देखता है तो वो उसके उबरने से पहले ही वो अपना पूरा जोर लगा देता है ताकि उसके आने से पहले उसको तितर बितर कर दे। क्या आप जानते हैं कि आखिरी दिनों में झूठे मसीह उठ खड़े होंगे? ये सब इसके फौरन बाद होगा, इस अजीम पैगाम के बाद होगा जो वो भाई पेश करेगा। वो दरअसल बराए रास्त एलिया की रूह से मसा किया हुआ होगा। लोग इसके बारे में गलत फहमी का शिकार होंगे, उनमें से बात सोचेंगे कि वो मसीह है, लेकिन वो मजबूती से कहेगा नहीं, क्योंकि उसे तो यूहन्ना की तरह आना है। यूहन्ना के दिनों में जब वो मुनादी के लिए बाहर निकला तो उन्होंने उससे कहा, क्या तू मसीह नहीं, क्या तू वो नहीं? उसने कहा, मैं नहीं हूँ, मैं तो उसकी जूती का तस्मा खोलने के भी लायक नहीं हूँ। मैं तो तुमको पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन वो रूह कुदस से तुम्हें बपतिस्मा देगा। यूहन्ना को उसकी जमीन पर मौजूदगी का इस कदर मजबूत यकीन था कि उसने कहा, वो यहीं कहीं है, इस वक्त वो तुम्हारे दरमियान है। लेकिन उसने उसको उस वक्त तक ना जाना जब तक कि उसने उस पर निशान को उतरते ना देखा। फिर जो ही उसने रोशनी को कबूतर की मानिंद उस पर उतरते देखा तो उसने कहा, वो ये है, ये वही है। लेकिन आप जानते हैं कि ये सिर्फ यूहन्ना ही था जिसने उसे देखा। यूहन्ना अकेला था जिसने उस आवाज को सुना, बाकी सब भी वहाँ मौजूद थे लेकिन किसी ने उसे ना सुना। लेकिन जब खुदा का हकीकी खादम सामने आता है तो शैतान अपनी तमाम मकारी के साथ लोगों के जहनों को खराब करता है। शैतान ऐसा करता है, चुनाचे जो लोग अच्छे और बुरे में तमीज नहीं कर सकते वो डगमगा जाते हैं, लेकिन बरगजीदा ऐसा नहीं करेंगे। बाइबल कहती है वो बरगजीदों को धोखा ना दे सकेगा। और अब देखें, बाइबल कहती है कि मसीह की आमद से पहले झूठे मसीह उठ खड़े होंगे और मसीह होने का दावा करेंगे और कहेंगे, देखो लोग कहते हैं कि वो बियाबान में है तो उसका यकीन ना करना, देखो वो कोठरी में है तो उसका यकीन ना करना। क्योंकि जैसे बिजली पूरब से कूदकर पश्चिम तक दिखाई देती है, वैसे ही इब्ने आदम का आना होगा, समझे? जी हाँ, वो जाहिर होगा और ये आलमगीर चीज होगी। और अब बेशक ऐसा होगा कि जब लोग इस चीज को पाएंगे तो ये वकूह हो चुकी होगी। अब देखें फिर वो क्या करेंगे। अब याद रखें, ये बात कलीसिया के घर जाने के फौरन बाद यानी ऊपर उठाए जाने के बाद होगी। अब झूठे नकल करने वाले भी हमेशा साथ रहेंगे, इसलिए हम किसी तरह भी ऐसी किसी चीज के साथ मुंसलिक होना नहीं चाहते। नहीं जनाब, और मेरा ईमान है कि जब वो शख्स आएगा जिसकी आने की पेशनगोई की गई है तो वो शख्स एक नबी होगा। मैं आपको ये कलाम से दिखा रहा हूँ, यकीनन वो नबी होगा और खुदा का मुकाशवा बल्कि खुदावंद का कलाम नबियों के पास ही आता है। ये बिल्कुल दुरुस्त है। इसलिए आप देखें, खुदा बदल नहीं सकता, इसलिए अगर उसके पास इससे कोई बेहतर इंतजाम होता तो वो उसे जरूर इस्तेमाल करता। लेकिन उसने तो इब्तदा ही से बेहतरीन तरीके का इंतखाब किया था। मिसाल के तौर पर वो अंजील की मुनादी करने के लिए सूरज को चुन सकता था, या वो चांद को चुन सकता था, हवा को चुन सकता था, लेकिन उसने इंसान को चुना और उसने ग्रहों को कभी नहीं चुना बल्कि इनफरादी तौर पर चुना, समझे? जमीन पर एक ही वक्त पर दो बड़े नबी कभी नहीं आए। अब देखें कि हर शख्स मुख्तलिफ है और उसकी वजह मुख्तलिफ है। अगर खुदा को एक ऐसा शख्स मिल जाता है तो बस ये काफी है, उसे ठीक उसके हाथ में होना चाहिए, तो फिर जो कुछ वो करवाना चाहता है वो करवा लेता है। उसके पास सिर्फ एक आदमी होना चाहिए, जैसा नूह के दिनों में था, जैसा एलिया के दिनों में था और जैसा मूसा के दिनों में था। और मूसा के जमाने में कई लोग उठ खड़े हुए, आप जानते हैं उन्होंने क्या किया, और उन्होंने कहा, अच्छा अब सब लोगों में तू अकेला ही मुकद्दस आदमी है। और वो दातन और कूरा थे जिन्होंने ये कहा, और खुदा ने कहा कि अपने आप को इन लोगों से अलग कर ले और मैं जमीन को खोल दूंगा कि इनको निगल ले, आप समझे? और फिर इस पर लोगों ने बुढ़ बढ़ाना शुरू कर दिया। खुदा ने कहा मैं इन सब को खत्म कर दूंगा। तब मूसा ने मसीह की जगह ले ली और अपने आप को रखना में खड़ा कर दिया और कहा, खुदावन ऐसा ना कर, समझे? और बेशक जब उसने मूसा ने इस काम के लिए अपने आप को मखसूस कर लिया तो फिर खुदा ने मूसा की बात को रद्द ना किया, क्योंकि वो उस वक्त मसीह की मानिंद काम कर रहा था और मूसा के अंदर मसीह था, यकीनन। अब देखें, आज हम बहुत खुश हैं कि खुदा अपने आप को हम पर जाहिर कर रहा है। मेरा ईमान है कि वो अजीम दिन रूनमा हो रहा है और फूट रहा है। रोशनी फूटनी शुरू हो गई है। फरदोस के परिंदों ने मुकद्दसों के दिलों में चहचहाना शुरू कर दिया है। वो जानते हैं कि अब ज्यादा देर नहीं है और बस कुछ है जो होने वाला है। बस अगर वो कुछ नहीं करता, अब देखें, तमाम कलाम पुर तहरीक है और कलाम का मुकम्मल तौर पर सच्चा होना जरूर है। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। यही वजह है कि मैं कैथोलिक कलीसिया के अंदर अपने दोस्तों से मुख्तलिफ हूँ। और मेरा ईमान है कि ये किसी इंसान की तरफ से नहीं लिखा गया। मेरा ईमान है कि ये रूह कुदस की तहरीक से लिखा गया है। ये तमाम छोटी छोटी बातें जो इसमें शामिल करने या दाखिल करने की कोशिश की गई है। और क्या आपने गौर किया है कि तजज़िया के वक्त पाक रूस से ममूर लोगों को बाहर निकाल दिया गया और उन हकीकी और सच्चे हवालों को एक दूसरे के साथ आपस में इस तरह जोड़ा गया कि हत्ता के उनके दरमियान किसी भी तरह से कोई इख्तलाफ नहीं है। मुझे कोई भी तहरीर का हिस्सा दिखाएं जहां एक लिखी हुई आयत बमुश्किल खुद की तर्दीद करती हो, या कोई एक या दो आयतें दिखाएं, क्योंकि बाइबल किसी भी जगह अपनी तर्दीद नहीं करती है। मैंने पुराने नकादों को ऐसे कहते सुना है, लेकिन मैंने एक अरसे से उन्हें पेशकश कर रखी है कि वो मुझे एक भी जगह बताएं जहां ऐसे है। बाइबल इस तरह नहीं है, ये महज इसलिए है कि इंसानी जहन में उलझन है, लेकिन खुदा में उलझन नहीं है, इसलिए कि वो जानता है कि वो क्या कर रहा है। वो जानता है। देखें, जैसा कैथोलिक कलीसिया कहती है, ठीक है, अगर खुदा दुनिया की अदालत एक कलीसिया के जरिए करेगा तो फिर वो कौन सी कलीसिया है? जरा इन कलीसियाओं को देखें जो हमारे पास मौजूद है। हमारे पास तकरीबन 900 मुख्तलिफ कलीसियाई तंजीमें मौजूद हैं। अब देखें, एक इस तरह और दूसरी उस तरह से सिखाती है, ये कैसी गड़बड़ है। तो फिर कोई भी शख्स जो जी चाहे कर सकता है, आप किसी भी तरह चल सकते हैं, लेकिन खुदा का एक मियार है और वो उसका कलाम है। इन बातों का जिक्र करते हुए मैं कैथोलिक लोगों को रद्द नहीं कर रहा, अब देखें, क्योंकि प्रोटेस्टेंट भी इसी तरह खराब हैं। लेकिन जब मैं एक कैथोलिक प्रीस्ट से बात कर रहा था तो उसने कहा, मिस्टर ब्रैनम, उसने कहा, खुदा अपनी कलीसिया में है। मैंने जवाब दिया, जनाब, खुदा अपने कलाम में है, वो कलाम है। जी हाँ जनाब, उसने कहा, ठीक है, वो उसमें है, लेकिन कलीसिया लाखता है। मैंने कहा, वो ऐसा नहीं कहता, लेकिन उसने कलाम को लाखता कहा है। उसने कहा, ठीक है, हम भी बपतिस्मे को इस तरीके से सिखाया करते थे और वगैरह वगैरह। मैंने पूछा, कब? उसने कहा, पीछे इब्तदाई दिनों में। मैंने कहा, क्या आप इजाजत देंगे कि कैथोलिक कलीसिया ऐसा करे? उसने कहा, जी हाँ। मैंने कहा, तो फिर मैं कैथोलिक हूँ, पुरानी तर्ज का कैथोलिक। मैं पुरानी तर्ज के तरीके पर ईमान रखता हूँ। आप लोगों ने आज इस सारे कलाम में गड़बड़ कर दी है और बड़ी मुश्किल से आप कलाम में से कोई बात सिखाते हैं। तुम औरतों और मुर्दा लोगों के साथ मिलकर शफायत करते हो और ऐसी बहुत सी बातें हैं। और फिर ओ मेरे खुदाया, जैसे गोश्त न खाना, और हो, मैं नहीं जानता ये सब क्या है, समझे? मैंने कहा, आप इसके मुतल्लिक कलाम में से मेरे लिए एक हवाला तलाश करके दिखाएं। उसने कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं, इसलिए कि जब कलीसिया ऐसा कहती है तो ये काफी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कलाम क्या कहता है, ये कलीसिया है। मैंने कहा, बाइबल ने कहा है कि जो कोई इसमें एक लफ्ज बढ़ाए या इसमें से एक लफ्ज निकाल दे, उसका हिस्सा किताबे हयात से निकाल दिया जाएगा। बस ये कलाम है और मैं कलाम पर ईमान रखता हूँ। और अब देखें, अगर अमूस और कलाम के दूसरे हिस्से जो इसके साथ मिले हुए हैं ऐसा ही कहते हैं, इसलिए आप याद रखें कि हम इसकी अहम बातों को ले रहे हैं। बस अगर मैं, बल्कि जब मैं वहाँ उस कमरे के अंदर दाखिल होता हूँ और उसका मसा अंदर आता है, तो उस वक्त जो कुछ वकू में आता है, अगर मैं उसे लिखूं जो वो कहता है, तो फिर मुझे एक मोहर के लिए यहाँ 3 महीने के लिए ठहरना पड़ेगा। चुनाचे मैं सिर्फ उन जगहों को छूता हूँ और उनको इस तरीके से बयान करता हूँ और ये लोगों को लाजवाब कर देता है। तो फिर भी ये लोगों को ठेस पहुँचाने के लिए नहीं होता, बल्कि बस इसलिए है ताकि ईमान लाएं और ये वक्त की बातें सीखें। आप जानते हैं मेरा क्या मतलब है। अब देखें, इस बात पर जरा गौर करें कि खुदा कुछ नहीं करता, जैसा कि अमूस ने कहा, जब तक पहले वो अपने बंदों नबियों पर जाहिर ना करे। और फिर हम देखते हैं कि वो क्या कर रहा है और जो कुछ वो करने जा रहा है उसे वो अब जाहिर कर रहा है। मेरा ईमान है कि खुदा अदालत के लिए मंजर पर आने की तैयारी कर रहा है, वो कुछ करने वाला है। और एक चीज है जो इस बात की यकीनन गवाही दे रही है कि हम आखिरी दिनों में हैं। हम लोदिकिया के कलीसिय जमाने के इख्तिताम में हैं। अब देखें, क्योंकि ये बातें सिर्फ आखिरी दिनों में जाहिर होनी है। अब देखें और जरा इसके बारे में अब सोचें। आए सिर्फ उसी चीज को लेने की कोशिश करें जैसे कि हमारा ईमान है कि रूह कुदस हम पर वाजे करेगा। अब याद रखें, कुछ भी जाहिर नहीं किया जाएगा, क्योंकि खुदा उस वक्त तक कुछ नहीं जाहिर करता जब तक कि पहले उसे अपने खिदमत गुजार बंदों और नबियों पर जाहिर ना करे। पेशतर इसके कि वो कुछ करे, वो उसे जाहिर करता है। और जब वो उसे जाहिर करता है तो आप उसे याद रखें कि वो कोई चीज है जो अपने राह पर गामजन है। देखें, क्योंकि वो जाहिर की गई है। ये चीजें जिनका जिक्र हम कर रहे हैं, इन्हें आखिरी दिनों में जाहिर किया जाना था। آخری نرسنگے سے پہلے اور آخری کلیسیا زمانے کے پیغام کے اختتام پر ظاہر ہونی تھی. یہ درست ہے. اب اگر آپ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں. آپ جیسا کہ گزشتہ رات میں نے آپ کے سامنے 3 بار مکاشفہ 10:1-7 کا حوالہ پڑھا, سمجھے, بلکہ ساتویں فرشتے کی آواز دینے کے زمانے میں جب وہ نرسنگا پھونکنے کو ہوگا تو خدا کا پوشیدہ مطلب پورا ہوگا. اور ایک چیز باقی بچی ہے, اور پھر جب یہ 7 مہروں والی کتاب کھل جائے گی تو پھر خدا کے سارے پوشیدہ بید ظاہر ہو جائیں گے. ہم سالہ سال سے اس کی کیوں تفتیش کر رہے ہیں, لیکن کلام کے مطابق جیسا کہ ہمارے پاس اس وقت سے پہلے اس کو سمجھنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا, اس لیے کہ یہ باتیں پوشیدہ رکھی گئی تھیں. ہم نے علامات کو دیکھا کہ یہ علامات کس چیز کے ساتھ مطابقت رکھتی تھیں, لیکن ان کو درست طور پر عیاں نہ کیا گیا تھا جب تک کہ یہ آخری دن نہ آ پہنچا, سمجھے. اب دیکھیں, پھر ہمیں ضرور اس آخری گھڑی میں ہونا چاہیے. اب یاد رکھیں, مت بولے, اب اس بات کو مت بولے کہ وہ اس وقت تک کچھ نہیں کرتا جب تک کہ پہلے اس کو ظاہر نہ کرے. اس کے علاوہ یہ بھی مت بولے کہ وہ اس کو سادگی کے ساتھ کرتا ہے کہ عقل مند اور دانا لوگ اس کو کھو دیتے ہیں. اگر آپ اس پر نشان لگانا چاہتے ہیں تو یہ متی 11:25-26 ہے. اور یاد رکھیں کہ وہ اس وقت تک کچھ نہیں کرتا جب تک پہلے وہ اسے آشکارا نہ کرے, اور وہ اس کو اس طریقے سے ظاہر کرتا ہے کہ ہوشیار اور تعلیم یافتہ لوگ اس کو کھو دیتے ہیں. یاد رکھیں, جب پہلا گناہ ہوا تو کیا ہوا تھا؟ یہ حکمت ہی تھی کہ دنیا نے کلام کی جگہ حکمت کی خواہش کی. اب اس بات کو مت بھولیں. او, ہمیں یہ سوچ کر کس قدر شکر گزار ہونا چاہیے. اب ذرا ان چیزوں کی طرف دیکھیں جو وقوع میں آئیں, اور ان باتوں کی طرف بھی دیکھیں جو اس نے ہمیں بتائیں. اس ٹیبرنیکل کی طرف دیکھیں. آپ لوگ اور ہم جو ان باتوں کے ساتھ یہاں پڑے ہوئے ہیں, اب میں ٹیپ ریکارڈ کرنے والے سے کہتا ہوں, اچھا آگے بڑھیں اور اس کو ریکارڈ کریں. لیکن دیکھیں, یہ بات میں صرف اس ٹیبرنیکل کے لوگوں سے کہنے لگا ہوں. آپ جو یہاں موجود ہیں, میں خداوند یسوع کے نام سے آپ کو کہتا ہوں کہ آپ ان سینکڑوں باتوں میں سے جو میں نے وقوع میں آنے سے پہلے کہی تھی, کسی ایک پر آپ انگلی رکھیں اور بتائیں جو پوری نہ ہوئی ہو. ایک مرتبہ بھی مجھے بتائیں کہ پلیٹ فارم کے اوپر کہیں بھی جہاں بھی اس نے کسی بھی وقت کوئی بھی بات کہی ہو جو ٹھیک اسی طریقے سے پوری نہ ہوئی ہو. کیسے, کیا ایک انسانی دماغ اس طرح کا ہو سکتا ہے؟ یقیناً نہیں. اس آنے والے جون کو 33 سال ہو جائیں گے جب وہ دریا پر ایک روشنی کی شکل میں ظاہر ہوا تھا. آپ میں سے جو پرانے وقت کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس وقت محض میں ایک لڑکا ہی تھا جب وہ روشنی اور وہ آواز آئی تھی, لیکن لوگوں نے سوچا کہ یہ میرا تھوڑا سا دماغی توازن پھر گیا ہے. بے شک اگر کوئی بھی ایسا کہہ دیتا تو غالباً میں بھی ایسا ہی سوچتا. لیکن اب آپ کو اس بات کے متعلق حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ کلیسیا کو بھی 1933 کے بعد اب حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی اس دن سے جب میں دریا پر کھڑا سینکڑوں لوگوں کو بپتسمہ دے رہا تھا, مجھے یاد ہے کہ جب اس لڑکے مارا نے کہا, بلی تو وہاں لوگوں کو بتکے بنانے جا رہا ہے, چھوٹا جم مارا وہاں موجود تھا, بلکہ میرا خیال ہے کہ اب وہ فوت ہو چکا ہے. میرا خیال ہے کہ وہ وہیں مر گیا تھا, کسی عورت نے اسے گولی مار دی تھی. لیکن اس نے مجھ سے کہا تھا, کیا تو لوگوں کو بتکے بنانے جا رہا ہے؟ میں نے کہا, نہیں جناب, میں ان لوگوں کو خداوند یسوع کے نام میں بپتسمہ دینے جا رہا ہوں. اس وقت ایک عورت بھی اس گروپ کے ساتھ جا رہی تھی. اس نے ایک دوسری عورت سے کہا, اس نے کہا, بلکہ اس نے اس کے متعلق کچھ اس طرح کی رائے دی تھی. اس نے کہا, ٹھیک ہے, مجھے بتک بننے میں کوئی اعتراض نہیں ہے. کہا, ٹھیک ہے, مجھے بھی کوئی پرواہ نہیں ہے. میں نے کہا, واپس چلی جاؤ اور توبہ کرو, تم یسوع مسیح کے نام میں بپتسمہ لینے کے قابل نہیں ہو. سمجھے, یہ کوئی کھیل نہیں ہے, یہ مسیح کی خوشخبری ہے جو کہ کلام کے اختیار کے ساتھ ظاہر ہوئی ہے. لیکن اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیوقوفی اور احمقانہ باتیں ہیں, یہ آپ کو کسی اور جگہ رکھنی چاہیے. مگر یاد رکھیں کہ کلام کے اندر اس کا وعدہ کیا گیا ہے کہ ایسا ہوگا, تو پھر بالکل ایسا ہی ہوگا, اور یہ یہاں موجود ہے. پھر وہاں اس دن جب وہ دریا پر کھڑے تھے تو خداوند کا فرشتہ, جس کے متعلق میں نے آپ کو بتایا تھا कि वो दूर से एक सितारे की तरह नजर आ रहा था, और जब वो नजदीक आया तो मैंने आपको बताया कि उसमें से सब्ज रोशनी किस तरह दिखाई दे रही थी, और वहाँ वो दरिया पर वो ठीक उस मकाम पर जाहिर हुआ जहाँ मैं बपतिस्मे दे रहा था। जबकि शहर के बिजनेसमैन लोग वहाँ मौजूद थे, उन्होंने पूछा इसका क्या मतलब है। मैंने कहा ये मेरे लिए नहीं है बल्कि आपके लिए है, मेरा ईमान है, समझे। वो सिर्फ आपकी खातिर था, खुदा ने ऐसा किया ताकि आप जाने कि मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। क्योंकि उस वक्त मैं एक बच्चा बल्कि महज 21 साल का एक लड़का था, इसलिए लोग मेरी बात नहीं मानते थे। आप देखें, क्योंकि एक लड़के के लिए इस किस्म का दावा बहुत बड़ी बात थी। और फिर मैं सोच रहा था, यहाँ भाई रॉबर्टसन मौजूद है जो हमारे खजानचियों में से एक है। चंद मिनट गुजरे कि मैंने उसे यहाँ देखा था। वो किसी रोज मुझे इस तस्वीर के बारे में बता रहा था जो होस्टिन में खींची गई थी, जिसे आपने देखा है, और मैं वहाँ उस मनाजरे में मौजूद था, और उस रात मैं उसके मुतल्लिक कोई बात शुरू करने वाला था। भाई राय अकेला या फिर एक और आदमी उसके साथ था, और उस ग्रुप में सिर्फ यही शख्स था जिसके पास रिकॉर्ड था। ये पुरानी तर्ज का तार वाला रिकॉर्ड था। अब मैं भाई रॉबर्टसन और उनकी अहलिया को देख रहा हूँ। बस तब ये बहन मिसिज रॉबर्टसन बीमार थी, और भाई राय एक तजर्बाकार सिपाही था। उसकी टांगे एक धमाके से जख्मी हो गई थी, और उन्होंने उसे वहाँ मरने के लिए छोड़ दिया था। ये फौज में एक अफसर था, जर्मनी के 88 नंबर टैंक ने इसको उड़ा दिया था जिसके अंदर ये था, और इस बंदे को तकरीबन खत्म ही कर दिया था, और उन्होंने इसे मरने के लिए एक तवील अरसे के लिए छोड़ दिया था, और उन्होंने कहा ये कभी चल नहीं सकेगा क्योंकि इसकी दोनों टांगे और दूसरी चीजें बहुत बुरी तरह मुतासर हो गई हैं। मेरे खुदाया, लेकिन अब वह चलने में तकरीबन मुझसे भी आगे निकल जाता है। लेकिन ये क्या था? वहाँ कुछ था जो उसने देखा था, और वो हॉस्टल में गया, और वो मुझे अपनी बीवी के मुतल्लिक बता रहा था, और उसके पास एक तार थी जिसे वो टेप के साथ लगा रहा था। ठीक है, और मुझे उम्मीद है जब इबादत खत्म हो जाएगी तो वो आप सबके लिए इसे चलाएगा। पुरानी तार के टेप पर उसने मेरी इबादतों को जो हॉस्टल में हुई थी रिकॉर्ड किया है। फिर उसने कहा कि उसकी बीवी भी वहाँ उस इबादत में थी, और उसने गुज़िश्ता रोज से पहले इस चीज पर कभी तवज्जो ना दी थी, और वो उस वक्त बड़ी परेशान थी। वो बीमार थी और वो दुआया कतार में शामिल होना चाहती थी। ना वो मुझे जानते थे और ना ही मैंने कभी उनको अपनी जिंदगी में देखा था। उस दिन वो एक खिड़की के पास बैठी हुई थी और बाहर देख रही थी, और वो बहुत अफसरदा और परेशान थी, आप जानते हैं, क्योंकि वो एक कार्ड हासिल करना चाहती थी ताकि वो दुआया कतार में खड़ी हो सके। और शायद उसी रात या उससे अगली रात या कुछ इस तरह ही था, जब वो कतार में खड़ी हुई थी तो कुछ हुआ था। मुझे यकीन है वही रात थी जब वो कतार में खड़ी हुई थी, और जब वो प्लेटफॉर्म के ऊपर आई तो रूल ने उसे बताया और कहा तुम इस शहर से ताल्लुक नहीं रखती हो, बल्कि तुम एक ऐसे शहर में रहती हो जिसका नाम न्यू अल्बानी है, और कहा तुम आज खिड़की के पास बैठकर बाहर देखती रही हो और दुआया कार्ड हासिल करने के लिए बेहद फिक्रमंद थी। कई साल गुजर जाने के बाद अब तक ये बात टेप में मौजूद है। और फिर इबादत के शुरू में पाक रूह वहाँ आ मौजूद हुआ, और वहाँ पर पहली इबादत थी जिसमें हम सिर्फ 3,000 लोग जमा हुए, और फिर 8,000 तक, और फिर बिल आखिर तकरीबन 30,000 तक जा पहुँचे। और फिर जब मैं वहाँ बोल रहा था तो मैंने पहली इबादतों में से एक में कहा मैं नहीं जानता कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अब ये टेप में मौजूद है। ताहम बात ये है, और हम बल्कि ये मेरे वक्त की बेहतरीन इबादतों में से एक है। इन इबादतों में कुछ होने वाला है, और ये इस कदर अजीम होगा जो अभी तक किसी ने नहीं देखा। और ये तकरीबन 8वीं, 9वीं या 10वीं रात के बाद खुदावंद का फरिश्ता 30,000 लोगों के सामने जाहिर हुआ और नीचे आया, और उसकी तस्वीर ली गई जो इस वक्त यहाँ मौजूद है, और इसकी कॉपीराइट वाशिंगटन डीसी में महफूज कराई गई है कि सिर्फ यही एक माफूकुल फितरत चीज है जिसकी दुनिया में तस्वीर खींची गई है। और आप जानते हैं कि दिनों के भेद बताते हुए कई मर्तबा मैंने ऐसा कहा है और बताया है कि एक शख्स के ऊपर मौत का साया है, उसके ऊपर उस साये की स्या टोपी है, और वो करीबुल मर्ग है। मेरा यकीन है कि ये बात यहाँ ईस्ट पाइंस या सौदर्न पाइंस में वाकया हुई। मैं वहाँ आखिरी इबादत में मौजूद था। एक खातून वहाँ बैठी हुई थी, और किसी ने उसे बताया कि वो जल्दी से तस्वीर खींचे, जबकि उस वक्त मैं एक औरत से बात कर रहा था और वो साया उस पर मौजूद था। मेरा ख्याल है कि ये तस्वीर अहम वाकयात वाले बोर्ड के ऊपर मौजूद है। ये काफी देर वहाँ रही है। वो काला साया ठीक उस औरत पर मुंडला रहा था, लेकिन जो ही पाकरू ने उसकी शिफा का ऐलान किया तो उस औरत ने एक और तस्वीर ली, तो वो वहाँ से जा चुका था। मैंने कहा कि आप शिफा पा चुकी हैं, खुदावन ने आपको शिफा दे दी है, कैंसर खत्म हो गया है, और ये ऐसे ही हुआ और वो तंदुरुस्त हो गई, समझे। यहाँ है आप देखें, ये फक्त इस बात को जाहिर करता है कि खुदा जानता है कि ये दिन का कौन सा वक्त है, हम नहीं जानते, हमें फक्त उसकी ताबेदारी करनी चाहिए। अब हम ऐसी और बहुत सी बातें कर सकते हैं, लेकिन आए जरा इन बातों को छोड़कर और एक मिनट के लिए पिछली मोहर को दुराएं, फिर हम इसको इसके साथ मिला सकते हैं। अब देखें, सिर्फ चंद एक लम्हात के लिए अब हम पहली मोहर को दुराएं। हमने पहली मोहर को खोलते वक्त देखा था कि शैतान के पास एक आला किस्म का मजहबी शख्स था। क्या आपने उस सफेद घोड़सवार पर गौर किया जिसके बारे में लोगों को ये सिखाया गया है कि वो इब्तदाई कलीसिया है जो निकली थी। लेकिन ओ मेरे खुदाया, ये बात कई सालों से सिखाई जाती रही है, लेकिन ये ऐसे नहीं है। आप सिर्फ गौर करें कि जब हमने दूसरी बातों को आपस में जोड़ा और इसका तसलसल देखा कि अब ये कहाँ जाकर मिलती है, समझे? अब देखें, अभी तक मैं नहीं जानता कि बाकी क्या है, लेकिन मैं ये जानता हूँ ये मुकम्मल तौर पर जाहिर होंगे, क्योंकि ये सच्चाई है, ये सच है। वो यकीनन रोम की कलीसिया का तंजीमी ढांचा था। वो लोग जो ये सोचते हैं कि यहूदी मुखालिफ मसीह हैं, वो यकीनन दुरुस्त सिमत से लाखों मील दूर हैं। आप ये कभी भी ना सोचें कि यहूदी मुखालिफ मसीह हैं। उनकी आंखें एक मकसद के लिए बंद की गई हैं, ताकि हमें दाखिल होने की राह मिल जाए और हमें तौबा करने का मौका मिल जाए। लेकिन मुखालिफ मसीह गैर कौम से है, यकीनन वो सच्चाई की नकल उतारने वाला है। मुखालिफ यानी खिलाफ होना। अब ये अजीम सुपरमैन हो, ये किस तरह का अजीम शख्स है? और बिलाखर इसे तख्त पर बिठा दिया गया, और फिर तख्त पर बिठाने के बाद उसे ताज पहनाया गया। और अब देखें, इसके बाद खुदा की जगह उसकी परस्तिश की जाती है। अब देखें, पेशतर इसके कि हम वहाँ जाएं, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। वो कौन था जिसके बारे में पालूस दूसरा तसालिकियों 2:3 में जिक्र करता है, जिसके मुतालिक उसने कहा कि एक शख्स आएगा? उस शख्स ने इन तमाम जमानों के अंदर उसे क्यों देखा? क्योंकि वो खुदा का नबी था, यकीनन। तो फिर क्यों उसने कहा कि रूह साफ तौर पर कहता है कि आखिरी दिनों में वो ईमान से फिरकर गुमराह करने वाली रूह की तरफ मुतवज्जो होंगे? आप जानते हैं कि गुमराही क्या है? कलीसिया में गुमराही की रूह का मतलब है मजहबी रूह, गुमराह करने वाली मजहबी रूह जो कि शैतान का काम करती है, यानी कलीसिया के अंदर रयाकारी करती है। अब देखें, ढीठ गुमान करने वाले, जहीन होशियार और चलाक और दीनदारी की वजह रखने वाले सिर्फ जाएं और ये कहें, अच्छा हम मसीही हैं और हमें चर्च जाना चाहिए। वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे, मगर मुकाशवात और रूह की कुव्वत और कामों का इनकार करेंगे, ऐसों से भी किनारा करना, समझे? अब गौर करें, उसने कहा इन्हीं में से वो लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और उन छचोरी औरतों को काबू कर लेते हैं। इसका ताल्लुक रूह कुदुस से मामूर औरतों के साथ नहीं है, बल्कि छचोरी औरतें जो तरह तरह की ख्वाहिशों के बस में हैं। तरह तरह की ख्वाहिशों के बस में होना, वो हर छोटी से छोटी चीज जिसे वो अपना सकती हो अपनाती हैं, और हर किस्म के माशरे में शामिल होती हैं, और जिस तरह से भी रहना चाहे रहती हैं, और फिर भी कहती हैं हम चर्च जाती हैं, हम भी बाकी लोगों की तरह दुरुस्त हैं। हालांकि वो नाचती, पार्टियों में शिरकत करती, बाल कटवाती, चेहरे पर रंग लगाती, और जिस चीज को भी पहनना चाहे पहनती हैं, तो भी कहती हैं हम पेंतिकोस्टल हैं, हम बाकी लोगों की मानी ठीक हैं। हो आपका अपना करदार आपकी शनाख्त करवाता है, ये सच है। गौर करें, लेकिन उसने कहा कि वो सच्चाई के एतबार से नामकबूल है। सच्चाई क्या है? कलाम मुकद्दस जो कि मसीह है। देखें, सच्चाई के एतबार से नामकबूल है। ओ, आप मेरे बारे में कहते हैं आप तो खवातीन को भगाने वाले हैं, आप खवातीन से नफरत करने वाले हैं, आप ये या वो करते हैं। नहीं जनाब, ये दुरुस्त नहीं है, बल्कि ये गलत बयानी है। मैं खवातीन से नफरत नहीं करता जनाब, देखें वो मेरी बहनें हैं, वो मेरी बहनें हैं। लेकिन मेरे नजदीक मोहब्बत दुरुस्त करना है। अगर ये दुरुस्त करना नहीं है तो फिर ये मोहब्बत नहीं है, और अगर ये ऐसा है तो फिर ये मोहब्बत तो है, मगर ये फिलियो मोहब्बत है, ना के अगापे मोहब्बत। और मैं आपको बताऊं, हो सकता है कि आप किसी खूबसूरत लड़की के लिए फिलियो मोहब्बत रखते हो, लेकिन अगापे मोहब्बत मुख्तलिफ है। वो एक ऐसी मोहब्बत है जो चीजों को दुरुस्त करती है और आगे किसी जगह खुदा से जा मिलती है, जहां हम अब्दियत में जिंदगी बसर कर सकते हैं, समझे? मेरा ये मतलब नहीं था, शायद ये इस तरह लग रहा हो, लेकिन मेरा, आप जानते हैं, कि मेरा क्या मतलब है। मुझे उम्मीद है कि आप इसे समझते हैं, ठीक है। लेकिन अब याद रखें, उसने कहा जिस तरह यनीस और यम्ब्रीस ने मूसा की मुखालफत की, इसी तरह ये भी करेंगे, लेकिन इनकी बेवकूफी जल्द जाहिर हो जाएगी। क्यों? जब मूसा को हुक्म मिला कि वो कुछ ऐसा काम करे तो ये बड़ा अजीब सा लगता था, लेकिन वो जितनी ईमानदारी के साथ वहाँ जा सकता था गया, और खुदा ने उसे हुक्म दिया कि वो उस लाठी को लेकर जाए और उसको नीचे फेंक दे तो वो सांप बन जाएगी। फिर उसने ऐसा किया कि उसे दिखाए कि क्या होने वाला है, और वो फिराउन के सामने उसी तरह जा खड़ा हुआ जिस तरह खुदा ने उसे हुक्म दिया था, और उसने अपनी लाठी फेंकी और वो सांप बन गई। इसमें कोई शक नहीं कि फिराउन ने कहा ये जादूगरी का छोटा सा कमाल है, इसलिए उसने जाकर अपने यनीस और यम्ब्रीस को तलब किया और कहा हम भी ऐसा काम कर सकते हैं। उन्होंने भी अपनी लाठियाँ फेंकी और वो भी सांप बन गई। अब मूसा क्या कर सकता था? ये क्या था? इस बात से ये देखना मुराद था कि खुदा की हर असली चीज के मुकाबले में शैतान के पास नकाल मौजूद है। वो लोगों को रास्ते से हटाने के लिए नकल करते हैं। मूसा ने क्या किया? क्या ऐसा कहा खैर मेरा ख्याल है मैंने गलती की है, बेहतर है मुझे वापस चले जाना चाहिए, बल्कि वो वहाँ खड़ा रहा क्योंकि उसने उसका हुक्म पूरे तौर पर माना था। इसके बाद पहली चीज जिसे आप जानते हैं वो ये थी कि मूसा के सांप ने दूसरों को खा लिया, समझे? क्या आपने कभी सोचा कि दूसरे सांपों के साथ क्या हुआ? वो कहाँ गए? मूसा अपनी लाठी को उठाकर दूसरे सांपों समेत बाहर चला गया। उसने उसके जरिए मौजजात किए, वो सांप उसकी लाठी के अंदर थे। ये अजीब बात है, समझे? कैसी तजुब खेज बात है, क्या ये ऐसा नहीं है? जी हाँ जनाब। अब देखें, मुखालफ मसीह आहिस्ता आहिस्ता रोशनी में आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि आप इस बात पर गौर करें। अब आप सुने, अब देखें, यहाँ मैं अपने कैथलिक दोस्तों से इल्तमास करता हूँ कि वो एक मिनट के लिए चुप बैठे रहें, फिर हम देखेंगे कि प्रोटेस्टेंट कहाँ पर हैं और हम सब कहाँ पर हैं, समझे? अब पहली कलीसिया पर तवज्जो करें। जबकि कैथोलिक कलीसिया कहती है कि वो पहली कलीसिया थी, तो उनका दावा बिल्कुल दुरुस्त है। वो थे, उन्होंने पेंतिकोस्त से शुरू किया था। ये वो मुकाम है जहाँ से कैथोलिक कलीसिया शुरू हुई थी। अब देखें, एक वक्त था कि मैं इस बात का मुश्किल से भी यकीन नहीं करता था जब तक कि मैंने तारीख को नहीं पढ़ा था, और फिर मैंने मालूम किया कि ये बात दुरुस्त है। उन्होंने पेंतिकोस्त से शुरू किया था, लेकिन उन्होंने उससे दूर भागना शुरू कर दिया, और अब देखें कि वो इस वक्त किस मुकाम पर हैं। अब अगर पेंतिकोस्टल लोग जिस तेजी के साथ दूर हट रहे हैं, अगर वो इसी तेजी से हटते गए तो 2000 साल तक भी ये नहीं चल सकेंगे। अब से 100 साल के बाद वो कैथोलिक कलीसिया से भी ज्यादा दूर हो जाएंगे, ये दुरुस्त है। लेकिन अब गौर करें कि ये सफेद घोड़सवार कैसा है। अब यहाँ जरा हम इसका पस मंजर देखेंगे जब तक कि हम इस मौजूदा मोहर को शुरू नहीं करते। अब जरा इस सफेद घोड़सवार पर तवज्जो करें। जब वो बाहर निकलता है तो उसने तीन मराहिल में काम किया। शैतान जिस तरह के मैंने कल रात साबित किया था, बिल्कुल खुदा की तरह तीन में है, लेकिन तीनों मराहिल में ये एक ही शैतान है। इसके तीन मराहिल पर गौर करें। पहले मरले में वो अंदर आया। अब जब पाक रूह नाजिल हुआ तो लोगों की सब चीजें मुश्तरक थी, और खुदा का रूह उन पर था, और सूर घर घर जाकर लोगों के साथ रोटी तोड़ा करते थे, और उनके दरमियान बड़े बड़े निशान और मौजजात हुआ करते थे। और फिर पहली चीज आप जानते हैं कि शैतान ने लोगों के अंदर बुड़बड़ाहट पैदा करना शुरू कर दी, और फिर थोड़े अरसे के बाद उन गुलामों और मुल्क के गरीबों ने जिन्होंने रूल दूस हासिल किया था, वो मुख्तलिफ जगहों पर गवाही देने गए, और उन्होंने अपने मालकों के सामने गवाही दी, और कुछ अरसे के बाद वहाँ पर सब ने जैसे कि फौजी कप्तान और मुख्तलिफ लोगों ने आना शुरू कर दिया। मशहूर मारूफ शख्सियतों ने उनकी बहादुरी को देखना शुरू कर दिया, और उन मौजजात और निशानात को जो उनके दरमियान सरंजाम होते थे देखकर उन्होंने मसीहत को कबूल कर लिया। खैर फिर आप देखें कि जब उन्होंने मसीहत को गले लगा लिया और वो उस मकाम पर गए जहां वो इबादत किया करते थे, एक पुरानी तर्ज के छोटे से तारीख हाल में जहां वो तालियां बजाते, शोर मचाते और गैर जुबानों में बातें करते थे और ये पैगाम हासिल करते थे। इसलिए वो इन्हें कभी भी मुकाबले या अपने कारोबार में नहीं ले जा सकता था। वो इस तरह उसका कभी यकीन ना करते थे, यकीनन नहीं। इसलिए उसे लबादा ओढ़ना पड़ा। चुनाचे उन्होंने बहम इकट्ठा होना और सोचना शुरू किया कि अब हम कुछ मुख्तलिफ चीज खड़ी करेंगे।
Jesus, right immediately at the first church age,
और यस्सु ने उन्हें पहले कलीसिय जमाने में फौरन बताया। मुकाशवा के दूसरे बाब में लिखा है कि मुझे तुझसे शिकायत है क्योंकि तुझ में नकीलियों के से काम है। नेको यानी आम आदमियों पर फतह पाना, और दूसरे लफ्जों में बजाय इसके कि हर शख्स एक दूसरे के मसावी हो, उन्होंने किसी को मुकद्दस आदमी बनाना चाहा। वो इसे इस किस्म का बनाना चाहते थे, वो इसे बुत परस्तों के नमूने पर बनाना चाहते थे जिनमें से वो निकल कर आए थे, और बिल आखिर उन्होंने ऐसा कर लिया। अब गौर करें, पहले नकीली हैं, और नकीलियों को बाइबल में मुखालफ मसीह कहा गया है क्योंकि ये मसीह और रसूलों की असल तालीम के खिलाफ थे। मैं उस शख्स का नाम लेना नहीं चाहता, वो एक बड़ा आदमी है, लेकिन चंद साल हुए कि मैं यहाँ उसकी इबादत में था, और चूंकि मैंने उसके साथ हाथ मिलाया था इसलिए वो जानता था कि मैं वहाँ मौजूद हूँ। उसने कहा, ओ आपको मालूम है कि आज हमारे दरमियान ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो अपने आप को पेंटिकोस्टल कहते हैं। उसने कहा, वो इमाल की किताब पर भरोसा करते हैं। उसने कहा, आप देखें, इमाल की किताब कलीसिया के लिए महज एक बाढ़ का काम था। क्या आप सोच सकते हैं कि एक ऐसा शख्स जिसने बाइबल का मुतालिया और आदमियों की तरह किया हुआ था और एक बुजुर्ग और बहादुर शख्स था, और फिर भी वो इस तरह की राय रखता हो? ये आवाज नहीं, क्योंकि ये आवाज रुक उसकी नहीं है। खैर, इसे तो इस तरह नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हर कोई आम फहम इस बात को समझ जाएगा कि रसूलों के इमाल रसूलों के अपने इमाल नहीं थे, बल्कि वो रुद्दुस के इमाल थे जो रसूलों में जाहिर होते थे। क्या आपको इल्म नहीं कि हमने किस तरह कलीसिया जमानों में उसका नक्शा खींचा था? वो जानदार वहाँ बैठकर अहद के संदूक की निगेबानी कर रहे थे। मत्ती, मरकस, लूका और योहन्ना वहाँ खड़े हुए उसकी निगरानी कर रहे थे। मत्ती, मरकस, लूका और योहन्ना की तहरीरों से वहाँ क्या वाकया पेश हुआ? ये वही दरख्त है जो लगाया गया था, और जब उसकी पहली शाख निकली तो कुछ हुआ, और अगर वो दरख्त कभी कोई दूसरी शाख निकालेगा तो फिर इसके पीछे एक और इमाल की किताब लिखी जाएगी। इसलिए आप समझ लें कि उसके अंदर भी बिल्कुल वही जिंदगी चली आ रही है। बस आज जब हम अपनी तंजीमी कलीसियाओं मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, लूथरन, नाम नहाद चर्च ऑफ क्राइस्ट और पेंटिकोस्टल और दूसरों की तरफ देखते हैं, तो हम इनको कहाँ पाते हैं? आप इन्हें कहीं भी नहीं पाते। मैं यहाँ इस बात को तस्लीम करूँगा कि चूँकि पेंटिकोस्टल लोदिकिया के कलीसिया जमाने में है और वो इस चीज के बहुत करीब है, इनके पास सच्चाई थी, लेकिन इन्होंने इसे रद्द कर दिया है। वो इसके साथ नीम गर्म हो गए हैं और खुदा ने इनको अपने मुंह से निकाल फेंका है। ये बात बिल्कुल कलाम मुकद्दस के मुताबिक है। आप इन हवाला जात को झूठा नहीं बना सकते, समझे? ये हमेशा ही सच्चे ठहरेंगे। इसलिए ऐसी कोशिश मत करें। सिर्फ एक ही बात है कि अपने ख्यालात का मुवाजना, बल्कि कलाम का मुवाजना अपने जेन के साथ ना करें, बल्कि अपने आप को कलाम के साथ खड़ा करें, फिर आप खुदा के साथ चल सकते हैं। कोई बात नहीं कि आपको कितनी कांट छांट क्यों ना करनी पड़े या अलग होना पड़े, लेकिन कलाम के साथ खड़े रहें, समझे? देखें कि पहली मर्तबा क्या हुआ, वो गिर गई, ठीक है। खुदा ने पहली मर्तबा जैसे काम किया तो उसे दूसरी मर्तबा भी वैसे ही काम करना है। उसे हमेशा एक ही तरीके से काम करना है, या फिर उसने पहली मर्तबा ही गलत काम किया था। देखें, हम फानी होने की हैसियत से गलती कर सकते हैं, लेकिन खुदा नहीं कर सकता। खुदा का पहला फैसला ही कामिल था, और जिस तरीके से वो किसी काम को करना पसंद करता है तो इससे मजीद बेहतर कोई और तरीका हो ही नहीं सकता। इसलिए वो उसमें इजाफा नहीं कर सकता, चूँकि वो शुरू ही से कामिल है। अगर ये ऐसे नहीं है तो फिर वो लामहदूद नहीं। अगर वो लामहदूद है तो वो आलमे कुल है, और अगर वो आलमे कुल है तो वो कादरे मुतलिक है। आमीन। खुदा होने के लिए उसको इन तमाम खूबियों का हामिल होना चाहिए। देखें, आप नहीं कह सकते कि अब उसने मजीद इल्म हासिल किया है। उसने मजीद इल्म हासिल नहीं किया, वो तो तमाम दनाई का सरचश्मा है, समझे? इस दुनिया में हमारी हिकमत शैतान की तरफ से आती है। ये हमको बागे अदन से विरसे में मिली है, जहाँ हमने हिकमत के लिए ईमान का सौदा कर लिया था। हवा ने ऐसे किया था। अब शुरू में उसे मुखालफ मसीह कहा गया। दूसरी मंजिल पर वो झूठा नबी कहलाया, क्योंकि वो रूह लोगों के दरमियान मुजस्सम हो गई। अब आपको याद है कि जब उस सफेद घोड़ सवार ने सफर शुरू किया तो उसके सर पर कोई ताज नहीं था, लेकिन बाद में उसे एक ताज दिया गया। क्यों? क्योंकि शुरू करते वक्त वो नकीलियों की रूह थी, इसके बाद वो एक शख्स के अंदर मुजस्सम हो गई, और इसके बाद उसको ताज पहनाया गया, बल्कि उसने ताज और तख्त हासिल किया। फिर वो काफी अरसे तक इसी हैसियत से काम करता रहा। अब जो ही मोरे खुलेंगी तो हम इसे देखेंगे। फिर हम देखते हैं कि एक तवील अरसे के बाद शैतान को आसमान से निकाल दिया गया और कलाम के मुताबिक उसने नीचे आकर खुद को तख्त नशीन कर लिया। जरा सोचें कि उसने अपने आप को उस आदमी में तख्त नशीन कर लिया और एक एहवान बन गया। उसके पास कुव्वत थी, बल्कि आला कुव्वत थी। जिस तरह के उसने किया, उसने मोजजात और बहुत कुछ किया, हत्ता के लोगों को कत्ल भी किया और खूनी लड़ाइयाँ भी लड़ी और दीगर सब कुछ किया जो के रोम पेश कर सकता था। ठीक है, उसने रोम की जालमाना सजा से लोगों को मारा। हम ठीक यहाँ कुछ हवाले दे सकते हैं। याद रखें कि यीशु मसीह रोमी सजा के तहत बल्कि सजाए मौत के तहत मरा। एक पैगाम जो मेरे दिल में है और मैं ये अगली इबादत में यानी मुबारक जुमे की दोपहर को बयान करना चाहता हूँ, जो कि इन तीन या चार बातों पर मुश्तमिल है। समझे? वहाँ उन्होंने उसे मसलूब किया। वहाँ मुकद्दस तरीन शहर में, दुनिया में सबसे ज्यादा मजहबी जगह यरूशलम थी। उन्होंने, जो दुनिया में सबसे ज्यादा मुकद्दस लोग समझे जाते थे यानी यहूदी लोग, उन्होंने उसे वहाँ मसलूब किया। सबसे ज्यादा जालमाना सजा जो रोम दे सकता था, उसे मसलूब किया। किसको? एक अजीम तरीन शख्स को जो कभी जमीन पर था, उन्होंने उसे वहाँ मसलूब किया। ओ मेरे खुदाया, खुदा मेरी मदद करे, मैं इसे बिजनेसमैन लोगों के ऊपर लहराऊं जब तक कि वो देख नहीं सकते कि वो कहाँ खड़े हैं। ठीक है, अब मेरा मकसद मुख्तलिफ ख्याल रखना या नापसंदीदा होना नहीं, बल्कि उस वक़्त तक झिझोड़ना है जब तक कि वो भाई अपने बुलंद मर्तबा लोग और होली फादर को देख नहीं सकते। और इस किस्म की बातें जो वो बिजनेसमैन लोगों के रसाले में लिखते हैं, जो कि फजूल हैं, मसीहों को किसी शख्स को फादर नहीं कहना चाहिए, जबकि वो शुरू ही इस तरह करते हैं जो मैं कर सकता हूँ। मैंने हर बात में उनकी मदद करने की कोशिश की है। आप देखें अब ये टेप कहाँ कहाँ जाती है, इसलिए अब मैंने अपना काम पूरा कर दिया है। यकीनन मेरे पास इसके अलावा और कुछ नहीं है जो मैं कर सकूं। ठीक है, सबसे पहले मसीह को याद रखें। आप पहले जैसा कि नकीलियों को देखते हैं, नकीलियों का जमाना क्या कहता है? उसने उस ग्रोह से दूर रहने के लिए आवाज उठाई जो शोर मचाते, तालियां बजाते थे और बेकदरी के साथ देखे जाते थे। जिस तरह पेंतीकोस के दिन हुआ, उन्होंने मतवाले लोगों की तरह हरकत की और रूम में जुमे और इस तरह के काम किए। वो इस किस्म की कोई बात नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा वो नशे में हैं। और मशहूर लोग, अब सुने, इसको मत खोएं। हो सकता है कि ये बात आपको दीवानगी लगे, लेकिन ये सच्चाई है। जब बुलंद मर्तबा लोगों ने अंदर आना शुरू किया तो वो इस बात के आगे झुक ना सके। जो बात खुदा को अजीम बनाती है वो ये है कि वो अपने आप को अदना बना लेता है, और ये वो बात है जो उसको बुलंद करती है। और उससे बड़ा कोई नहीं है। उसने खुद को इतना पस्त किया जितना के कोई हो सकता है। वो आसमान का बादशाह था, लेकिन वो जमीन पर यरहू जैसे छोटे से शहर में आ मौजूद हुआ। और वो इतना पस्त हो गया, यहाँ तक कि उस शहर में जो सबसे छोटा आदमी था, उसकी भी नजर उस पर पड़ी ताकि उसे देखे क्या ये दुरुस्त है। वो जकई था, ये सच है। वो इस कदर बुरे नामों से पुकारा गया जिस कदर के किसी इंसान को पुकारा जा सकता है। उसको जादूगर और शैतान और बालजबूल कहा गया। ये वो है जो दुनिया ने उसके बारे में सोचा। और वो तकलीफ दे मौत मुआ। उसके पास सर धरने की भी जगह ना थी। वो हर तंजीम की तरफ से रद्द कर दिया गया, लेकिन खुदा ने उसे इतना सर बुलंद किया कि उसको आसमान को देखने के लिए भी नीचे देखना पड़ता है। देखें खुदा कितना फरोतन है, समझे? और उसको इस कदर ऊंचा नाम दिया कि आसमान और जमीन का हर एक खानदान उसके नाम से नामजद होता है। जमीन का हर खानदान यीशु के नाम से नामजद है। आसमान का हर खानदान यीशु के नाम से नामजद है। एक ऐसा नाम जिसके सामने हर एक घुटना झुकेगा और हर जुबान इकरार करेगी कि वो खुदावंद है, जो यहाँ हो या जहन्नुम में। जहन्नुम उसके आगे झुकेगा, बाकी हर चीज उसके आगे झुकेगी, समझे? लेकिन याद रखें कि पहले वो फरोतन बना, इसके बाद उसे सर बुलंद किया गया, समझे? खुदा को सर बुलंद करने दें। वो जो अपने आप को फरोतन बनाता है, खुदा उसको सर बुलंद करेगा, समझे? अब देखें, हमने गौर किया था कि नकीलियों की रूह हिकमत और चलाकी चाहती थी। इसको उसी तरह दलाइल देने थे जिस तरह के अदन के अंदर हुआ था, और उसने चलाकी के साथ कलाम के खिलाफ दलाइल दिए और कलीसिया गिर गई। ये क्या था? अब आए कुछ बयान करते हैं और जरा यहाँ इस कलीसिया में से अपनी तरह के कुछ लोगों को लेते हैं। अगरचे आप हकीकी तौर पर रूह से मामूर नहीं थे, अब जो कुछ मैं कहने लगा हूँ इसे लें। इसमें मेरा मतलब शहर के मेयर की मुखालफत करना नहीं है। मैं ऐसा नहीं सोचता क्योंकि मैं उसको जानता हूँ। उसका नाम मिस्टर बटोरिफ है। क्या मिस्टर बटोरिफ अभी तक मेयर है? देखें, मैं इस बात से ना वाकिफ हूँ मगर मिस्टर बटोरिफ मेरे एक अच्छे दोस्त हैं, समझे। लेकिन कहने का मतलब ये है कि शहर का मेयर और सारी पुलिस फोर्स और तमाम सिपा सलार वो सब यहाँ आए। तो पहली बात आप जानते हैं वो क्या करेंगे? वो ये है कि अगर उनके जहन में कोई बात आए और वो उसे बोर्ड और यहाँ के लोगों के साथ करना शुरू करेंगे और कहेंगे अब आपको मालूम है ये क्या है, ये काम जरा मुख्तलिफ होना चाहिए। अगर आप खुद रूह से मामूर नहीं हैं, तो पुलपट के पीछे से एक हकीकी रूह से मामूर शख्स लें, वरना पहली बात आप जानते हैं वो ये होगी कि आप उनकी तालीम को सुनना शुरू कर देंगे। अगर ये नस्ल नहीं करती तो शायद अगली नस्ल करेगी, और ये इस तरह से शुरू होना है, समझे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहना है इधर देखें, यही माकूल बात है, तो आप सुनेंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ एक शख्स आकर ये कहता है ये गिरजाघर बहुत छोटा है, आए इससे बड़ा गिरजाघर तामीर करते हैं, मैं आपको यहाँ से एक ऐसा गिरजाघर तामीर करके दूंगा कि जिन पर काफी रकम या $500,000 खर्च किए जाएंगे, मैं इसकी तामीर यहाँ करवाऊंगा और मैं इसकी शायद करूंगा। जब वो ऐसा करते हैं तो उनके हाथ में छाल उतारने के लिए कुरारा आ जाता है, 10 में से 9 गुना मुनाफा चाहते हैं। आप इस किस्म के लोगों को जानते हैं, और जब वो ऐसा करता है तो पहली बात आप जानते हैं कि वो सिर्फ उन्हीं कामों को करेगा जो उसे पसंद है। चूंकि भाई जॉन डोए इस काम की पुश्त पर हैं और वो इस कलीसिया पर पैसा खर्च करने वाले हैं, इसलिए कि आप उसके मुतल्लिक कुछ नहीं कह सकते। देखें, फिर आप कोई सेमिनरी पास एक होशियार आदमी को ले आते हैं जो खुदा के मुतल्लिक इतना ही जानता हो जितना कि कोई अफ्रीकी मिस्री रात के मुतल्लिक जानता हो, और आगे आए और वो उस शख्स के आगे पीछे रहे क्योंकि वो उसे हमेशा नई कार खरीद कर देता है और वो उसे चारों तरफ घुमाता है और उसे ये और वो और दूसरी चीजें खरीद कर देता है। अब देखें, ये बिल्कुल इसी तरह शुरू हुआ था, ठीक है। अब हिकमत और चलाकी पर गौर करें। उन्होंने कहा जरा इधर देखें, क्या ये काबिले दराक बात नहीं है? अब भला इससे क्या फर्क पड़ता है कि हमारी औरतें किस तरह से बाल संवारती हैं? लेकिन बाइबल कहती है कि इससे फर्क पड़ता है। जरा इन सैकड़ों बातों में से एक को लें, समझे, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? चूंकि खुदा ने कहा है इससे फर्क पड़ता है, इसलिए ये फर्क है। लेकिन आप देखें, जब वो इसमें आना शुरू कर देते हैं और ट्रस्टी बोर्ड और डीकन और दूसरे सब, तो पहली बात आप जानते हैं कि पास्टर अंदर रहे या बाहर रहे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बस यही बात है, देखें ये वही लोग हैं जिन्होंने उसको अंदर लाने के लिए वोट दिए थे, ठीक है। अब जरा गौर करें कि जब उस रूह ने जुम्बश करना शुरू की और फिर वो कलीसिया जिसके अंदर बहुत से आला ओहदेदार और बहुत बड़ी बड़ी चीजें आ गई और बेबहा दौलत आनी शुरू हो गई, यहाँ तक कि थोड़े ही अरसे के बाद उन्होंने उसकी आवाज सुनी और बिल आखिर शैतान की गैर मौजब बातों को अपना लिया, और यही वो बात है जो हवा ने बागे अदन के अंदर ली। अब आप इस बात को सुने क्योंकि ये दुरुस्त बात है। फितरी औरत आदम की दुल्हन को देखे, पेशतर इसके कि वो उसकी बीवी बनती, वो खुदा के कलाम के खिलाफ दलाल सुनने के बायस शैतान की चाल में फंस कर गिर गई। इससे पहले कि आदम हवा को बतौरे बीवी जानता, उससे पहले शैतान ने उसे मात दे दी। ये दुरुस्त है। आपने शजरे दुल्हन पर मेरी मुनादी सुनी है, वहाँ इसके मुतालिक गुफ्तगू है, समझे, ठीक है। अब गौर करें, वहाँ हवा दलाइल सुनकर गिर गई। अब उस शैतान ने दलाइल देने की कोशिश की, उसने कहा लेकिन खुदावन ने ऐसा कहा है। शैतान ने कहा ओ तू जानती है कि खुदा वाकई ऐसा नहीं करेगा, समझे। तुम अकलमंद बनना चाहती हो, तुम कुछ जानना चाहती हो क्योंकि तुम एक गूंगे बच्चे के सिवा कुछ नहीं हो, समझे, तुम्हें कुछ जानना चाहिए। तो फिर क्या ये शैतान नहीं है? ओ मेरे खुदाया, क्या ये मॉडर्न लोग नहीं है जो कहते हैं देखें, ओ वो जुनूनियों का एक टोला है, इसलिए उनकी तरफ कोई तवज्जो ना दें, अब समझे, वहाँ मत जाएं, समझे। अब नस्ल इंसानी की पहली फितरी दुल्हन को देखें, इससे पहले कि उसका शोर उसके पास जाता, वो शैतान से झूठ सुनने की बदौलत अपनी पाकीजगी से गिर गई, जबकि खुदा ने उसे अपने कलाम के पीछे पहले ही किला बंद कर रखा था। अगर वो कलाम के पीछे खड़ी रहती तो वो कभी भी ना गिरती। तवज्जो दे, अब ये कुदरती या फितरती औरत की बात है। अब लानत क्या है? असल लानत तो खुदा के कलाम से मुंह मोड़ना है। अब देखें कि वो तकरीबन 98% उस पर ईमान रखती थी, लेकिन आपको सिर्फ एक ही बात को छोड़ना होता है, समझे? उसने कलाम पर बहुत यकीन रखा। ओ, यकीनन, जब उसने ये कहा तो शैतान को मानना पड़ा कि वो दुरुस्त है। लेकिन अगर वो आपको बस जरा सा भी पकड़ लेता है तो वो बस यही कुछ चाहता है, समझे? एक ही काम है जो आपको करना पड़ता है, वो ये है कि गोली को जरा सा हिला दें तो वो निशाने को खो देगी, समझे? बस ये बात है। अब वो कलाम पर इस कदर ईमान रखती थी, लेकिन तो भी उसको खो बैठी। अब देखें उसका नतीजा क्या निकला। बस वो एक छोटी सी दलील की खातर कलाम से हट गई। अच्छा, अब आप कहते हैं औरतों के मुतल्लिक क्या ख्याल है, या फिर आप इस किस्म की बात के मुतल्लिक क्यों बोलना चाहते हैं? लेकिन उन छोटी बातों में से कोई एक बताता हूँ तो आप कहते हैं इससे क्या फर्क पड़ता है, चाहे वो इब्तदाई सबूत क्यों ना हो, इससे फर्क पड़ता है। आप सुने, इसको सीधा करना जरूरी है। हमने तकरीबन 7 कलीसियाई जमानों में भी इस पर सोच विचार किया था, लेकिन वक्त आ गया है जब खुदा ये फरमाता है। वो सिर्फ बात ही नहीं करता बल्कि वो दिखाता भी है और इसकी तस्दीक भी करता है और इसे साबित भी करता है। ये सच है, और अगर वो ऐसा नहीं करता तो फिर वो खुदा नहीं है। बस ये बात है, क्योंकि खुदा अपने कलाम के पीछे खड़ा होता है। अब तवज्जो दें, अब देखें, फितरी औरत फितरी मौत लाने का सबब बनी, और बजाय इसके कि वो कलाम के पीछे खड़ी रहती और जो कुछ खुदा ने हुक्म दिया था वो करती, उसने अपने आप को अक्लमंद बनाने के लिए दलील को सुना। वो दनाई चाहती थी ताकि दाना बन जाए, इसलिए कि उसने दलील को सुना, और यूं वो तमाम नस्ल इंसानी को खो बैठी, समझे? और अब देखें, इस वक्त जब रूहानी औरत मसीह की दुल्हन जो 35 के दिन इब्तदाई रसूली कलीसिया के साथ शुरू हुई नासियाई काउंसिल के अंदर उसी चीज को खो बैठी। ली, आप जानते हैं ये सच है। और नासियाई काउंसिल में जब उसने बड़े बड़े चर्चिस और इस किस्म की दूसरी चीजों को जो कि कॉन्स्टेंटाइन ने उनको पेशकश की थी हासिल करने के लिए अपने रूहानी पेलोटेपन का सौदा किया, और यूं चंद रोमन रसूमात की खातर अपने रूहानी पदेशी हकूक को खो बैठी। अब ये बात कैथोलिक लोगों के लिए सख्त है, लेकिन प्रोटेस्टेंट लोगों ने भी ऐसे ही किया, और यहाँ बाइबल के अंदर इनको फाशा बल्कि कस्बी की बेटियाँ कहकर पुकारा गया है। ये सच है, इनमें से हर एक ऐसा ही है, इसमें बहाने की कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन इनमें हमेशा थोड़ा सा बकिया ऐसा भी रहा है जो दुल्हन बनने के लिए आगे बढ़ता रहा है। तवज्जो दे, देखें, पेशतर इसके कि उसका शोहर उसे लेता, वो अपना पदेशी हक खो बैठी, समझे? अज़दवाजी बंधन से पहले ही वो अपनी पाक दामनी खो बैठी। अब आपको याद है कि कलाम में लिखा है कि इस लौदीकिया के कलीसियाई जमाने में वो कहती है, मैं मलका बन बैठी हूँ और मैं किसी चीज की मोहताज नहीं हूँ, मैं दौलतमंद हूँ और मेरे पास हर चीज की बौतात है, और वगैरह वगैरह, और हो तमाम दुनिया की नजरें मुझ पर लगी हुई हैं, मैं एक अजीम मुकद्दस कलीसिया हूँ, और वगैरह वगैरह। हम इस तरह से हैं और पूरा जमाना ही ऐसा है। लेकिन यीशु ने कहा, तू नहीं जानता कि तू नंगा है, अंधा है, और खार और कमबख्त और गरीब है, और तू जानता तक नहीं, ये उसकी हालत है। अब देखें, अगर पाकरू कहता है कि आखिरी दिनों में ऐसी हालत होगी तो ये इसी तरह है, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है, और ये इसी तरह है। अब गौर करें, अब जब उसने अपना पदेशी हक या अपनी पाक दामनी का हक यानी कलाम की सीरत को बेच दिया तो उसने क्या किया? जब हवा ने ये काम किया तो वो सारी मखलूक को खो बैठी, तमाम मखलूक उसकी वजह से गिर गई। अब तवज्जो दें, इसी तरह जब कलीसिया ने ऐसा किया और रूह और कलाम की जगह अकायद को गले लगा लिया तो उसने तमाम निजाम को लानती बना दिया, और हर तंजीमी निजाम जो कभी था और जो कभी होगा इस सबब से लानती होकर गिर पड़ा, इसलिए कि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। और जब आप कुछ लोगों को बाहम जमा करते हैं कि वो किसी चीज को देखें, तो एक का सर इस तरफ होता है और दूसरे का सर उस तरफ होता है और एक का सर किसी और तरफ होता है और फिर वो इन बातों को बाहम परखते हैं और ये बाहर लोगों को पहुंचाते हैं। तो यही वो चीज है जो आपको हासिल होती है। ठीक यही वो काम है जो उन्होंने नासी काउंसिल के अंदर किया और यही वो काम है जो उन्होंने मेथोडिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, चर्च ऑफ क्राइस्ट और दीगर कलीसियाओं के साथ किया। और उनको इसकी परवाह नहीं कि खुदा किसी शख्स पर क्या जाहिर करता है और वो अपनी स्नाद की खातिर जो कुछ उनका अकीदा उनको सिखाता है उसको सिखाने के पाबंद होते हैं, वरना वो आपको बाहर निकाल देंगे। अब मुझे समझाने की कोशिश ना करें, देखें, क्योंकि मैं उनके साथ रहा हूँ इसलिए मैं इस बात को जानता हूँ। ये ठीक इसी तरह से है, इसलिए सारा निजाम लानती हो चुका है। तज्जुब की बात नहीं कि फरिश्ते ने कहा, ए मेरी उम्मत के लोगों, उसमें से निकल आओ ताकि उसकी आफतों में से कोई भी तुम पर ना आ पड़े। इसलिए वो आगे बढ़ रही है, वो लानती है, इसलिए उसे खुदा के कहर की लानत को उठाना पड़ेगा, इसलिए कि उसने अपनी पाक दामनी के हक को बेच दिया है, समझे? लेकिन ओ मेरे खुदाया, लेकिन याद रखें, इस हालत को देखते हुए भी खुदा ने योएल 2:25 में वादा किया, अगर आप चाहें तो इसे लिख लें, आखिरी दिनों में उसने कहा, जो कुछ टिड्डियों के एक गोल से बचा उसे दूसरा गोल निगल गया और जो कुछ दूसरे से बचा उसे तीसरा गोल चट कर गया और जो कुछ तीसरे से बचा उसे चौथा गोल खा गया। कीड़ों के बाद कीड़े आते रहे और इस कलीसिया को खाते रहे जब तक के पीछे एक टुंड ना रह गया। गौर करें, जो कुछ रोमन से बचा वो लूथरन चट कर गए और जो कुछ लूथरन से बचा वो मेथोडिस्ट खा गए और जो कुछ मेथोडिस्ट से बचा वो पेंटिकोस्टल खा गए। देखें, यहाँ तक के बिल आखिर वो एक टुंड बन गया। आपको मालूम है क्या हुआ? अगर आप उन टिड्डियों को लें जो पहला गोल और दूसरा गोल और वगैरह वगैरह हैं और फिर आप किताब में उनका ताकुब करें तो फिर आप इस बात को मालूम कर पाएंगे कि वो एक ही किस्म का कीड़ा है जो मुख्तलिफ मराहिल में आया। अपने नुक्ते को थामे रखें, ये मोहरे इसी तरह हैं, ये एक ही तरह के कीड़े हैं जो आप उस वक्त देखेंगे जब हम इसे बाहर निकालेंगे। चुनाचे अब मैं आपको बताऊंगा कि ये हमेशा एक ही कीड़ा है, उनमें से चार टिड्डियां, चार वहाँ हैं और वहाँ जो हैं वो एक ही तरह की हैं, एक जैसी रूह है, जो एक से बचा वो दूसरी ने निगल लिया, जो उससे बचा वो तीसरी ने निगल लिया, बस यहाँ तक कि बिलाखर उन्होंने उसे एक टुंड बना दिया। लेकिन योएल ने कहा कि खुदावन फरमाता है कि मैं उन बरसों का हासिल जो तुम्हारे खिलाफ भेजी हुई फौजे मलख निगल गई और खाकर चट कर गई तुमको वापस दूंगा। ये क्या है? वो इसे किस तरह करने जा रहा है? अगरचे मुखालफ मसीह मसीह की तालीम के खिलाफ होने की वजह से शुरू हुआ और कलाम की जगह अकायद को गले लगा लिया, जिस तरह बाइबल कहती है कि कई बरसों तक असलाकार आकर उस पर जोर देते रहे, लेकिन आखिरी दिनों में नरसिंगा फूंका जाएगा। मुकाशवा 10:1-10 के मुताबिक उसने कहा, बल्कि सातवें फरिश्ते की आवाज़ देने के जमाने में, यानी आखिरी दिनों में खुदा का पोशीदा मतलब पूरा होगा। मलाकी 4 कहता है कि इस जमीन पर होलनाक दिन के आने से पेशतर जो जमीन को भट्टी की आग की तरह जलाकर राख कर देगा एलिया को भेजा जाएगा। और वो बहाल करेगा और औलाद के दिल वापिस वालिदों के ईमान की तरफ माइल करेगा, यानी असल रसूली पेंटिकोस्टल ईमान की तरफ फेरेगा जिसको बहाल करने का वादा किया गया है। अब ये बात इस कदर साफ है जितनी के कलाम मुकद्दस कह सकता है। अब उसका वादा है और अब अगर हम आखिरी दिनों में हैं तो फिर कुछ ना कुछ होना है, समझे? और ये हो रहा है और हम इसको अपनी आंखों से देख रहे हैं। अब शैतान की तसलीस पर गौर करें, एक ही शख्स मुख्तलिफ रूप धार कर आ रहा है, बिल्कुल इस तरह उन टिड्डियों ने भी एक दूसरे के साथ किया, नकीलियों जो के रूहानी तौर पर मुखालफ मसीह है, पोप जो के झूठा नबी है, फिर हैवान शैतान खुद मुजस्सम होता है, वो ऐसा नहीं कर सकता। अब देखें, जब आप आगे चलते हैं तो इन बातों को अपने जिम में रखें, क्योंकि जो ही आप इसको देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि ये घोड़सवार आपको ठीक उसी मुकाम तक लेकर आएंगे। देखें, मैं आपके सामने एक तस्वीर कशी कर रहा हूँ, अगर मैं इसको तख्ते स्याह पर खींचता तो आप इसको बेहतर तौर पर समझ सकते, लेकिन देखें मैं इस पर तवज्जो कर रहा हूँ। अब देखें और आप इसको याद रखें, क्योंकि पहली चीज वो एक मुखालफ मसीह की रूह है। योहन्ना यूं कहता है, ए बच्चों, मुखालफ मसीह की रूह नाफरमानी के फरजंदों में पहले ही से काम कर रही है, देखें उस बीज ने काम शुरू कर दिया है और फिर अगले कलीसिया जमाने में उसने एक कहावत की सूरत इख्तियार कर ली, और इससे अगले जमाने में उसने एक तालीम की सूरत इख्तियार कर ली, और उससे अगले जमाने में उसको ताज पहनाया गया। क्या ये बात इतनी साफ नहीं कि आसानी से पढ़ी जा सकती है? आप इसे कहीं से भी पढ़ सकते हैं, समझे? देखें वो कैसे आता है। अब देखें, पहले वो क्या कहलाया? मुखालफ मसीह की रूह, इसलिए कि वो कलाम के खिलाफ था। यही बात थी जो उसने शुरू की, और खुदा के कलाम से हटाने के लिए हूबहू सब कुछ ही किया। ये ऐसा नहीं कि शायद हवा ने एक दिन काइन को डांटा हो, समझे? ये इस तरह नहीं था, बल्कि पहली बात जो हुई वो कलाम से इनराफ था, वो कलाम से मुनरफ हो गई। और यूं पहली चीज ने जिंदा खुदा की कलीसिया में असमत फरोशी शुरू की, और मसीह की दुल्हन कलाम से मुनरफ हो गई, और उसने कलाम से मुंह मोड़कर रोमन अकीदे को गले लगा लिया, और हर तंजीम के साथ ऐसे ही हुआ, उन्होंने बिल्कुल यही काम किया। लेकिन अब उसने वादा किया है कि आखिरी दिनों में वो इसको दोबारा बहाल करने के लिए राह निकालेगा। खुदावंत का कलाम जमीन पर उसी तरह नाजिल होगा जिस तरह के इब्तदा में हुआ, और हो उसको दोबारा बहाल करेगा किस तरह, जिस तरह उसका आगाज हुआ था कलाम के खिलाफ। और जब ये शख्स खुदा के रूह से मसा होकर आएगा तो वो क्या करेगा? वो सिर्फ औलाद का ईमान वालिदों की तरफ फेरेगा, वो इस तरीके से बहाल करेगा, और आपको ठीक उस कलाम को ठीक उसी जगह पर पाएंगे, और ये वही काम करेगा। यीशु ने कहा, अगर कोई शख्स जो मेरा है और वो जो मुझ पर ईमान रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा। जब उन्होंने उसे कुछ करने को कहा तो उसने कहा, मैं सिर्फ वही करता हूँ जो बाप मुझे दिखाता है, मैं कुछ भी नहीं करता जब तक के पहले उसे देख ना लूं। जो कुछ मैं बाप को करते देखता हूं वो मैं भी करता हूं, पहले बाप को करते देखता हूं फिर वो मैं करता हूं, समझे? क्या आप उसे देखते नहीं? क्यों? क्या ये महज अखबार पढ़ने के बराबर है, समझे? अब देखें, अब पहले उस वक्त वो मुखालफ मसीह बना, अब देखें कि वो सिर्फ रूह में मुखालफ मसीह का किरदार अदा नहीं कर सकता था, इसलिए वो मुखालफ मसीह बना, और उसी रूह ने एक शख्स को पकड़ा जिसने बिल्कुल वही बातें सिखाई जो मुखालफ मसीह की रूह कर रही थी, और फिर वो उसी मुखालफ मसीह की रूह से एक झूठा नबी बन गया। अब उस शख्स के मुतालिक क्या ख्याल है जो एक तंजीम के अंदर है? इसका फैसला खुद कर ले। मैं नहीं जानता कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है? फिर आखिरकार वो एक हैवान बन जाता है। अब इसके लिए इंतजार करें, हम थोड़ी देर में इसे देखेंगे, समझे? ठीक है। अब शैतान की तसलीस इस तरह है, शैतान हमेशा शैतान है। शैतान पहले मुखालफ मसीह रूह बना, फिर मुखालफ मसीह की रूह मुजस्सम होती है और झूठा नबी बनती है, और इसके बाद वो एक हैवान बन जाता है। देखें, जब वो बुरी रूह उस मुखालफ मसीह के अंदर नहीं थी, बल्कि जब शैतान को बजाते खुद नीचे फेंक दिया जाता है, तो वो नीचे आकर उस जगह पर कब्जा कर लेता है जहाँ बुरी रूह सुकूनत करती है, ये शैतान है। और इसके बाद फिर शैतान एक शख्स के अंदर मुजस्सम हो जाता है, ये महज अपने आप को दोहरा रहा है। यही बात यहूदा अस्करियोती के अंदर थी। उसने क्या किया था? क्या वो उन लोगों में से एक ना था जो मसीह के खिलाफ थे? क्यों? हालांकि वो खजानची था और वो उसके साथ चलता था, यकीनन हालांकि वो शागिर्दों के साथ साथ चलता था, और वो उनके साथ बाहर गया और बदरुओं को निकाला, और जो कुछ दूसरों ने किया वही कुछ उसने भी किया। लेकिन मसीह खुदा मुजस्सम था, इमैनुएल यानी खुदा जो जिस्म में जाहिर हुआ। जिस तरह यीशु खुदा का बेटा था, उसी तरह यहूदा हलाकत का फर्जंद था, मुजस्मे खुदा और मुजस्मे शैतान। बाज लोगों ने उस वक्त सिर्फ तीन सलीबें ही देखी, लेकिन वहाँ चार थी। गुलगत्ता की पहाड़ी पर हम सिर्फ तीन देखते हैं। यीशु दरमियान में था, और एक डाकू उसके दाएं और एक डाकू उसके बाएं था। और तवज्जो दें, एक डाकू ने दूसरे से, बल्कि यीशु से कहा, अगर तू अब आप जानते हैं कि वो कलाम है। उसने कहा, अगर तू कलाम है तो तू अपने आप को नहीं बचाएगा? क्या तू इसके बारे में कुछ नहीं करेगा? यही बात आज भी है। क्या आपने उन पुराने शैतान को आकर ये कहते नहीं सुना, अगर तू इलाही शिफा को मानता है तो यहाँ कोई ऐसा भी है जिसकी आंखें हैं, क्या तू उसकी आंखों को नहीं खोलेगा? और चिल्लाया, मुझे अंधा कर दे, मुझे अंधा कर दे। ये वही पुराना शैतान है, समझे? वो चिल्लाए, अगर तू सलीब से नीचे उतर आए तो हम तुझ पर ईमान ले आएंगे, अगर तू खुदा का बेटा है तो इन पत्थरों को कह कि रोटियां बन जाएं। ये वही पुराना शैतान है। देखें, आप उनसे दूर रहें। नहीं, इसी तरह यीशु ने किया, वो उनमें से किसी के लिए नकाल ना बना। उन्होंने उसके हाथों बल्कि उसकी बेशकीमत आंखों के ऊपर इस तरह पट्टी बांधी और सरकंडा लिया, उसके सर पर मारा और कहा, अगर तू एक नबी है तो अब हमें बता कि तुझे किसने मारा है। वो सरकंडे को एक से दूसरे के हाथ में देते रहे, अब हमें बता तुझे किसने मारा है तो हम ईमान ले आएंगे कि तू एक नबी है। लेकिन उसने अपना मुंह ना खोला, वो वहाँ बैठा रहा, समझे, उसने कोई तमाशा ना दिखाया। आप गौर करें, उसने उसी तरह किया जैसे बाप ने उसे बताया था, समझे। उनको आगे बढ़ने दें, उनका वक्त आ रहा है। उसने कोई तमाशा ना दिखाया, उसने सिर्फ वही किया जो बाप ने उसे दिखाया। उनको आगे बढ़ने दें, उनका वक्त आ रहा है, फिक्र मत करें। जी हाँ जनाब, अब देखें, उन लोगों ने उसकी पोशाक को छुआ लेकिन उन्होंने कोई कुव्वत महसूस ना की। लेकिन जब एक नादार औरत ने जो जरूरतमंद थी उसकी पोशाक को छुआ तो उसने मुड़कर कहा, मुझे किसने छुआ है। जी हाँ, तो फिर क्या था, ये छूना मुख्तलिफ था। आप देखें, ये इस बात पर मुनस्सर है कि आप उसे किस तरह छूते हैं। देखें आप कैसे ईमान रखते हैं। अब आप समझे, अब जिस तरह शैतान ने किया, अपने आप को मुखालफे मसीह से झूठे नबी में मुजस्सम किया, और यहूदियों के दिनों में इब्तदाई कलीसिया में वो मुखालफे मसीह था, तारीख जमाने में वो दुनिया के लिए झूठा नबी बन गया। देखें, उसके साथ उसके मकरूहात का प्याला है, लेकिन अब ये कलीसियाई जमाने के लिए है, और कलीसिया के आसमानी घर में चले जाने के बाद वो हैवान बन जाता है और शैतान मुजस्सम हो जाता है और वो लाल अजदहा बन जाता है। ओ मेरे खुदाया, क्या आप समझ नहीं रहे ये मेरा क्या मतलब है। फिर वो अपने लोगों के दरमियान मुजस्सम होता है, उसके अपने लोग उसकी ताकत के साथ बंधे हुए हैं, और झूठा नबी अपने ही लोगों के दरमियान झूठी नबूवत करता है। उनको गुमराही की तासीर के हवाले किया जाता है ताकि वो झूठ पर ईमान रखें और उसके सबब से सजा पाए। ऐसे लोग दीनदारी की वजह रखते हैं मगर कलाम का इनकार करते हैं। खुदा अपना काम तीन में करता है, रास्तबाजी, तकदीस और पाकरू का बपतिस्मा। वो अपने आप को अपने लोगों में मुजस्सम करता है। अब बिल्कुल इसी तरह शैतान मसीह की नकल करता है। हो, अब शैतान भी अपने आप को मुजस्सम करता है। अब तवज्जो दें, शैतान जब यीशु अपने आप को अपने लोगों में मुजस्सम करता है तो वो जिंदगी जो मसीह में है वही उस आदमी में होती है। अगर आप अंगूर की बेल की जिंदगी को लेकर कद्दू की बेल के अंदर डाल दें तो क्या होगा, वो मजीद कद्दू ना उगाएगी बल्कि अंगूर उगाएगी। और अगर आप आड़ू के दरख्त की जिंदगी को लेकर नाशपाती के दरख्त में डाल दें तो फिर क्या होगा, क्या वो नाशपाती पैदा करेगी, नहीं बल्कि वो आड़ू पैदा करेगी। जिंदगी बताती है कि वो क्या है, समझे। जब आप लोगों को ये कहते हुए सुनते हैं कि उनको रूह कुदस मिल गया है लेकिन वो इस कलाम का इनकार करते हैं तो फिर उनके साथ कोई गड़बड़ है, क्योंकि रूह कुदस ने इस कलाम को लिखा है और यीशु ने कहा कि अगर किसी शख्स के अंदर मेरा रूह है तो फिर वो मेरा काम करेगा। क्या आप इसको पढ़ना चाहते हैं, क्या आप इसको लिखना चाहते हैं, तो ये यूहन्ना 14:12 में है। जी हाँ, ठीक है, जो मुझ पर ईमान रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा बल्कि इनसे बड़े काम करेगा क्योंकि मैं बाप के पास जाता हूँ, समझे। फिर वो उसे मुकद्दस और पाक साफ करता है और फिर वो खुदा के जूर खड़ा हो सकता है, क्योंकि जब वो स्याही का कतरा वहाँ गिरता है तो उस शख्स को गड़े की दूसरी तरफ ले जाता है, समझे। अब तो जो दे, जब शैतान अपने आप को अपने लोगों में मुजस्सम करता है तो वो बिल्कुल वही काम करता है जो शैतान ने किए थे। क्या आप इस बात को नहीं देखते, उसने क्या किया, वो एक मासूम औरत के पास गया और उसको धोखा दिया। ठीक यही काम अब बाज शैतान कर रहे हैं। वो ठीक ऐसी किसी जगह पर जाते हैं और कहते हैं, बल्कि किसी ऐसी जगह पर जहां पास्टर कहीं बाहर गया हो, वो आकर कहते हैं, ओ आप सिर्फ हमारे साथ शरीक हो। हाँ, ये शैतान का काम है, अब ये सच है। और जब शैतान अबलीस होते हुए अपनी कलीसिया में मुजस्सम होता है तो फिर वो लोग कत्लोगारत और मारदाड़ करने वाले बन जाते हैं और वगैरह वगैरह, क्योंकि शैतान शुरू ही से खूनी और झूठा है, समझे। ठीक है, जब शैतान लोगों में मुजस्सम होता है तो वो फिर क्या करता है, वो होशियार है और शरारत करना उसका काम है। अब बाइबल में तलाश करें और मुझे बताएं कि खुदा ने कब होशियार लोगों के साथ काम किया है। इसकी तहकीक करें और देखें कि क्या ये चलाक और होशियार लोग ही नहीं जो हमेशा बुदरू गिरफ्तार होते हैं। ये बहुत सख्त बात है लेकिन ये सच है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आप हाबल और काइन दोनों की 14 पुश्तों को लें और उन 14 नस्लों को देखें जो उनसे आईं और फिर देखें कि उन दोनों के अंदर कौन चलाक और कौन हलीम थे। जी हाँ, यीशु ने इस किस्म के लोगों को क्यों न चुना? उसने मछलियां पकड़ने वाले और उन लोगों को चुना जो अपने दस्तखत करना न जानते थे और उन्हें अपनी कलीसिया का सरबरा बना दिया। ये दुरुस्त है, क्योंकि हिकमत कुछ नहीं है, ये मसीह के खिलाफ है। दुनियावी हिकमत हमेशा मसीह के खिलाफ है। यीशु ने कभी नहीं कहा कि तुम जाकर सेमिनरियां बनाओ, और ना ही उसने कभी बाइबल स्कूलों की बाबत कहा, बल्कि उसने कहा कलाम की मुनादी करो, खुशखबरी की मुनादी करो। और उसने ये बात कही, ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे। देखें, आपको ऐसा करना पड़ेगा। दूसरे लफ्जों में उसने कहा, तमाम कौमों में जाकर खुदा की कुदरत का मुजाहिरा करो। अब तवज्जो दें, शैतान की ये ड्यूटी है कि वो खुदा के कलाम के उल्ट हिकमत से दलाइल देकर उसको बिगाड़े। हो मेरे खुदाया, हो फिर वो अपने लोगों के ऊपर उसी असल कलाम को रद्द करने की वजह से अपनी छाप लगाता है। अब ऐसा करें, क्या आप मेरे साथ थोड़ी सी देर और बर्दाश्त करेंगे जब तक हम इस बात को हासिल नहीं कर लेते? मैं ये नहीं चाहता कि आप इस बात को खो दें। मुझे यहाँ आपको एक नमूना दिखाना है। बस आप इस सारे नमूने को और बाकी सारी चीजों को कलाम में देख सकते हैं। आप नहीं, मैं आपको उलझन में फंसाना नहीं चाहता। पुराने ऐहदनामे में जब किसी शख्स को गुलाम होने के लिए फरोख्त किया जाता था, तो हर 50 साल के बाद एक साले युबली आता था। 49 साल के बाद साले युबली आता था। जब कोई गुलाम उसको सुनता तो वो आजाद होना चाहता था, तो कोई चीज उसको आजाद होने से रोक नहीं सकती थी। और वो अपना बेलचा नीचे फेंकता और कहता था, बड़ा अरसा गुलामी की है, अब मैं वापिस अपने घर जाना चाहता हूँ, क्योंकि नरसिंगा फूंका गया है। ये सच है। लेकिन अगर वो अपने मालिक से मुतमिन होता था और वो आजाद होकर नहीं जाना चाहता था, तो उसको हैकल के दरवाजे पर लेकर जाया जाता था और वो एक सितारी लेते थे। आप जानते हैं सितारी क्या होती है? और उसके कान के अंदर सितारी से सुराख किया जाता था, और ये सुराख इस बात का निशान होता था कि वो गुलाम कभी वापस नहीं जा सकता। क्या ये सच है? फिर उसे सारी उम्र के लिए अपने मालिक की खिदमत करनी पड़ती थी। मुझे परवाह नहीं इसके बाद कितने ही साले युबली के नरसिंगे फूके जाते थे या जो कुछ भी होता था, लेकिन वो अपने आजाद होने के पदेशी हक को मुकम्मल तौर पर बेच चुका था। जब कोई शख्स अंजील की सच्चाई को रद्द कर देता है, तो फिर शैतान उस पर एक निशान लगा देता है। कहाँ? उसके कान पर। वो उसे इस हद तक बहरा कर देता है कि वो मजीद सच्चाई को सुन नहीं सकता और वो खत्म हो जाता है। अगर वो सच्चाई को नहीं सुनता तो उसी ग्रोह के साथ रहता है जिसके साथ वो है। नहीं, और तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आजाद करेगी। देखें, सच्चाई आजाद करती है। खुदा अपना निशान उस वक्त लगाता है जब लोग उसके पास आते हैं। खुदा अपना निशान अपने लोगों पर अपने तस्दीक शुदा और अपने माउदा कलाम के जरिए लगाता है। ये बात यूहन्ना 14:12 के अंदर मौजूद है। और दूसरा हवाला, अगर आप इसके साथ लिखना चाहते हैं, तो मरकज 16 है। यीशु ने कहा, ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे। आए जरा इस बात को एक मिनट के लिए लें। क्या वो मजाक कर रहा था? क्या उसका सिर्फ यही मतलब था? क्या उसका सिर्फ ये मतलब था कि ये काम सिर्फ रसूलों के लिए है, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं? तवज्जो दें, जरा इसके पसे मंजर को पढ़ें। लिखा है कि तुम जाकर, कहाँ? तमाम दुनिया में जाकर अंजील की मुनादी करो। किन के सामने? सारी खल्क के सामने। लेकिन अभी तक तो ये तीसरे हिस्से में भी नहीं पहुँची। इसलिए जहाँ कहीं इस अंजील की मुनादी की जाती है, तो फिर ये मौजज़े तमाम दुनिया के अंदर सारी खल्क के सामने जाहिर होंगे। ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे, सिर्फ मुट्ठी भर लोगों के दरमियान नहीं। जैसा कि एक दफा एक शख्स मुझे बता रहा था, खुदा ने इलाही शिफा की नेमत सिर्फ 12 रसूलों को दी थी, और बस यहाँ बहुत से भाई बैठे हुए हैं जिनके दरमियान खड़े होकर उसने ऐसा कहा था, समझे? उसके पास चंद मिनटों के अंदर कहने के लिए बहुत मवाद था। बस अब गौर करें, तमाम दुनिया में सारी खल्क के सामने ये मौजज़े होंगे। पर शैतान के बेइत्तकादी के निशान को ना ले। अब देखें, अगर वो ऐसा कर सकता है तो वो आज रात आप पर निशान लगाएगा। वो आपको दीवार के साथ लगाकर छेदेगा और आप बाहर निकल जाएंगे और कहेंगे, मैं इसके मुतालिक नहीं जानता। आप घर जाएं और इसका मुतालिया करें और फिर संजीदगी के साथ दुआ करें, इसलिए कि इस वक्त हर एक काम बिल्कुल कलाम के मुताबिक है। इस वक्त ये मुकद्दस घड़ी है। और ठीक ये बात कई सालों से साबित की जा चुकी है और यही वो घड़ी है क्योंकि यही वो वक्त है। अब उसकी बेइतकादी के निशान को अपने कानों में मत ले, समझे, क्योंकि वो शुरू ही से बेईमान है। उसने उस पर शक किया, ठीक है, ओह मत उसे कलाम को लेकर उसकी हिकमत के साथ मिलावट करके इस्तेमाल करने की इजाजत ना दे, क्योंकि वो इसे अपने दलाल देने वाली कुव्वत के साथ उल्टा पेश करता है। आप सिर्फ अलीम बने और कहें, चूँकि खुदा ने ऐसा कहा है इसलिए ये इसी तरह है। अब देखें, ओ हाँ, चूँकि हमें बहुत देर हो रही है इसलिए हमारे लिए बेहतर होगा कि यहीं पर रोक दें और अपने मजमून को शुरू करें। आए अब हम दूसरी मोहर की तरफ बढ़ते हैं। जब जब्बा होकर जिंदा होने वाले बरे ने इसको खोला तो दूसरे बछड़े नुमा जानदार ने कहा, आ और इस मोहर के वेद को देख कि ये क्या है, समझे। अभी हम इस वेद को समझते हैं। अब याद रखें, बरा ही हर एक मोहर को खोलता है और दूसरा जानदार। अब देखें, अगर आप इसके उन असूलों पर जो हमने कलीसियाई जमानों के अंदर देखे थे गौर करें तो वहाँ यही चीज है। दूसरा बल्कि पहला शेर बबर था और उससे अगला एक बछड़ा था या कुछ और या बैल की तरह था, आप समझे। और उस जानदार ने कहा, आ और देख। अब बरे ने मोहर खोली और फिर वो देखने के लिए आगे बढ़ा और जो ही वो आगे बढ़ा तो क्या हुआ, आए देखें कि उसने क्या देखा। आ और देख, इसमें एक भेद है जो मोहर बंद किया गया है और तकरीबन 2000 साल से भेद रहा है। आए देखें कि ये क्या है। अब हमने यहाँ ध्यान दिया था कि उसने देखा क्या, कि एक लाल घोड़ा आगे बढ़ता है। अब मेरी समझ के मुताबिक, मेरी समझ के मुताबिक ये बड़ी तलवार जो उसके हाथ में दी गई थी। अब देखें, हमने अगले 15 या 20 मिनटों में तीन बातों पर गौर करना है। आए इसको पढ़ें और देखें कि वो यहाँ क्या कहता है। और वो बाहर निकला, चौथी आयत, फिर एक घोड़ा निकला जिसका रंग लाल था, पहला वाला सफेद था। इसके सवार को ये इख्तियार दिया गया कि जमीन पर से सुला उठा ले ताकि एक दूसरे को कत्ल करे, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। अब चूंकि यहाँ अलामतें मौजूद हैं, इसलिए हमें इनको बड़ी बारीकी से देखना चाहिए। लेकिन मेरी समझ के मुताबिक सबसे बेहतरीन बात जो मैं जानता हूँ वो ये है कि आप देखें कि यीशु ने इन बातों की पेशनगोई मत्ती 24 में की है, समझे। उसने कहा, तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे, तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे। और लेकिन उसने कहा, उस वक्त खात्मा ना होगा। देखें, उस वक्त खात्मा ना होगा, गौर करें। उन्होंने यीशु से तीन सवाल पूछे, समझे, और उसने उन्हें तीनों सवालों का जवाब दिया। यही वो बात है जहाँ हमारे बहुत से भाई फंस जाते हैं और किसी को किसी जगह जोड़ने की कोशिश करते हैं। एडवेंटिस्ट भाई तकरीबन इसको पीछे सब्बत के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं और कहते हैं, अफसोस उन पर जो उन दिनों में हमला हों और जो दूध पिलाती हों और सब्बत के दिन दरवाजे बंद हो जाएंगे, और इस तरह की और बातें करते हैं। मेरे खुदाया, देखें, किसी भी तरह इन बातों का सवाल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, समझे। वो सवाल का जवाब दे रहा था जो उन्होंने पूछा था, लेकिन उसने उन सब बातों को आखिरी दिनों के साथ मुंसलिक नहीं किया। उसने कहा, तुम सुनोगे, यहाँ हम सिर्फ इसी बात पर गौर कर रहे हैं, अगली चंद रातों में हम मजीद बातों पर गौर करेंगे। देखें, उसने कहा, तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे और वगैरह वगैरह, ये सब अभी नहीं हुआ। देखें, मिसाल के तौर पर वो वापस जाएंगे, फिर वो आपको निकाल देंगे और वगैरह वगैरह, और ये सब कुछ अभी तक वकूफ में नहीं आया। फिर वो उन बातों की तरफ मुड़ता है जिसके मुतालिक उन्होंने उससे पूछा था कि दुनिया की आखिरत कब होगी और ये सब बातें कब होंगी। वो कौन सा वक्त है जब यहाँ किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा, इसका निशान क्या होगा, और तेरे आने और दुनिया का खात्मा कब होगा। देखें, उन्होंने उससे ये तीन सवाल पूछे थे, और वो फिर बैठ गया और दुनिया के खात्मे की बात करने लगा। और उसने कहा, जब तुम अंजीर के दरख्त को कोंपले निकालते देखो तो समझ लेना कि वक्त नजदीक है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ये नस्ल हरगिज तमाम ना होगी जब तक इन सब बातों को पूरा होते हुए ना देख ले। एक बेदीन शख्स तफसीर के बगैर इस पर क्यों कर तकिया करना पसंद करेगा, समझे। उसने कहा, ये नस्ल वो नस्ल नहीं जिनसे वो गुफ्तगू कर रहा था, बल्कि ये नस्ल जो अंजीर के दरख्त को कोंपले निकालते हुए देखेगी। अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, जरा अपनी नजरों के सामने कुछ देखें। 2500 साल के बाद बनी इसराइल को पहली मर्तबा एक कौम की हैसियत से उभरते हुए देखा गया है। दुनिया का कदीम तरीन झंडा आज रात यरूशलम के ऊपर लहरा रहा है। इसराइल अपने मुल्क के अंदर वापस आ चुका है। एक मर्तबा का जिक्र है कि यहाँ एक भाई था जो मिशनरी बनना चाहता था और उसने महसूस किया कि मिशनरी बनके यहूदियों के पास जाना चाहिए। मैंने कहा, हो सकता है कि अब आप एक हासिल कर लें और फिर, लेकिन वो लोग पूरी कौम की हैसियत से सोचते हैं। नहीं जनाब, बनी इसराइल को इनफरादी तौर पर नहीं बल्कि कौमी तौर पर तब्दील होना है और एक कौम एक दिन में पैदा होगी और ये इसराइल है। पूरा इसराइल निजात याफ्ता है। जरा इस बात को याद रखें। पौलुस यूं कहता है कि तमाम इसराइल निजात याफ्ता है। अब तवज्जो दे, सारा इसराइल, और ये बात बिल्कुल सच है। अब इस बात पर गौर करें, लेकिन यीशु ने कहा था, जब तुम अंजीर के दरख्त और दूसरे दरख्तों को कोंपले निकालते देखो। अब तवज्जो दे, 2500 साल पहले ऐसा कोई वक्त नहीं आया जब बनी इसराइली कभी अपने मुल्क के अंदर आए हों। हमारे पास पेश करने के लिए एक छोटी सी फिल्म है जिसका उन्वान है आधी रात में 3 मिनट, और आप इससे वाकिफ हैं। इसमें वो एक कौम की हैसियत से मौजूद है जहां दाऊद का 6 कोनों वाला झंडा लहराया जा रहा है और ऐसी तमाम चीजें मौजूद हैं। क्या कभी तंजीमों के अंदर कभी ऐसी बेदारी आई है जैसी उन्होंने गुज़िश्ता चंद सालों में हासिल की है? अब जरा इसका मुतालिया करें, हम भी अपने घर में हैं। तंजीमें कब किसी शख्स की खिदमत में इस कदर बहार में आई हैं जितनी के बिली ग्राहम की खिदमत में आई हैं, जैसे कि मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट और वगैरह वगैरह। अपनी तवारीख के अंदर तहकीक करें कि ऐसा शख्स पहले कब रूनुमा हुआ जिसके नाम का इख्तिताम HAM के साथ खत्म होता हो। जरा अपने आप से पूछें, ABE जैसे ABRAHAM। अब देखें, इब्राहिम के नाम के 7 हरूफ हैं ABRAHAM, लेकिन हमारे भाई बिली ग्राहम के नाम के हरूफ GRAHAM 6 बनते हैं, ना के 7, यानी दुनिया। और वो इस दुनियावी कलीसिया के साथ ही खिदमत कर रहा है। और सदूम के अंदर होते हुए लूत दुनियावी कलीसिया की नुमाइंदगी कर रहा था, और जब वो शख्स सदूम के अंदर गया और वहाँ मुनादी की तो खुशखबरी के जरिए उनको अंधा कर दिया गया। लेकिन उनके दरमियान एक था जो इब्राहिम के पास ठहरा रहा, और इब्राहिम ने उसको एलोहिम, खुदावंद कहकर पुकारा। क्योंकि जब इब्राहिम ने 3 कुआते देखा तो उसने कहा, ऐ मेरे खुदावंद। लेकिन जब लूत ने 2 कुआते देखा तो उसने उनको खुदावंदों कहकर पुकारा। यहाँ आपका फर्क मौजूद है। यहाँ तसलीसी लोग अपने काम पर गौर करें, समझे? यीशु ने कहा, जिस तरह लूत के दिनों में हुआ। क्या आप फर्क देखते हैं? तवज्जो दें और इसका शुमार करें। अब देखें, रूहानी कलीसिया यानी दुल्हन के पास सिर्फ एक आया जिसकी नुमाइंदगी इब्राहिम कर रहा था, और उसकी इब्तदा सदूम से नहीं हुई थी। अब देखें कि उसने क्या किया। उस एक ने उन दोनों की तरह मुनादी नहीं की थी, उसने उनको सिखाया, लेकिन इसके बाद उसने उनके सामने एक निशान भी दिया। उसने मसीहाई निशान दिया, उसकी पीठ खेमे की तरफ थी, और उसने कहा, इब्राहिम। अब यहाँ एक और बात याद रखें कि चंद रोज पहले दरअसल उसका नाम अब्राम था, लेकिन उसने कहा, इब्राहिम तेरी बीवी SARAH कहाँ है? चंद रोज पहले उसका नाम SARRA था। इब्राहिम ने कहा, वो तेरे पीछे खेमे में है। उसने कहा, इब्राहिम मैं। देखे, यहाँ फिर आपके जाती इस्म की तरफ इशारा है। मैं उस वादे के मुताबिक जो मैंने तेरे साथ किया है फिर आऊंगा। आप देखें ये क्या था, समझे? एक आदमी जिसके कपड़ों पे मिट्टी पड़ी हुई थी, जो मकई की रोटी और बछड़े का गोश्त खा रहा था और गाय का दूध पी रहा था। जी हाँ जनाब, वो एलोहिम खुदा था जो बदन में जाहिर हुआ था। उसने वादा किया आखिरी दिनों में वो खुद एक बार फिर बदन में जाहिर होगा। ध्यान दे, इब्राहिम तेरी बीवी सारा कहाँ है? वो तेरे पीछे खेमे में है। उसने कहा, मैं तेरे पास फिर आऊंगा। लेकिन बेशक वो औरत जो तकरीबन 100 साल की थी, वो पीछे खेमे के अंदर, खेमे के पर्दे के पीछे अपनी उस हालत पर हंस पड़ी। उसने कहा, मुझ बूढ़ी औरत से? अच्छा, आप जानते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के साथ कई सालों से मियां बीवी के तौर पर नहीं रह रहे थे। इसलिए कि वो 100 साल का था और वो 90 साल की थी। सारा ने कहा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन खुदा ने कहा, वो क्यों हंसी? हालांकि उसकी पीठ खेमे की तरफ थी, वो क्यों ये कहकर हंसी कि ये क्यों कर हो सकता है? देखें, यहाँ उसने उनको एक निशान दिखाया। अब देखें, उसने वादा किया है कि ये वाकया आखिरी दिनों में फिर दोहराया जाएगा। दो आदमियों ने सदूम के अंदर जाकर कलाम की मुनादी की और उनको कहा कि उसमें से निकल जाओ, क्योंकि वो जगह जलाई जानी है और वगैरह वगैरह। और लूत लड़ खड़ा उठा, तो भी वो दुनियावी कलीसिया के गुनाह और गलाजत के साथ उन तंजीमी प्रोग्रामों में जद्दोजहद करता रहा। लेकिन दुल्हन, बल्कि वो एक शख्स उन लोगों के अंदर ना गया। वो सिर्फ गया तो सिर्फ दुल्हन के नमूने को बुलाया। अब हम आखिरी दिनों में हैं। देखें, अब गौर करें। आप कहते हैं वो खुदा था जो जिस्म में जाहिर हुआ। यीशु ने खुद कहा, तुम किस सबब से मुझे संसार करते हो? उसने कहा, क्या बाइबल में, बल्कि तुम्हारी शरीयत में ये नहीं लिखा कि वो नबी जिनके पास खुदा का कलाम आया? यीशु ने कहा कि कलाम नबियों के पास आता है, क्योंकि वो तमाम बातों में कलाम के मुताबिक था। इसलिए उसने कहा कि खुदा का कलाम कहता है कि कलाम नबियों के पास आता है, और तुमने उन्हें खुदा कहा, क्योंकि खुदा का कलाम उनके पास आता है। उसने कहा, तो तुम मुझे किस तरह संसार करते हो, जबकि मैंने कहा कि मैं खुदा का बेटा हूँ? देखें, उनकी अपनी शरीयत से उसने उन्हें चुप करा दिया। यहाँ हैं आप, समझे? अब हम कहाँ पर हैं? हम आखिरी वक्त में हैं। अब बड़े ही गौर से सुने। अब हमने देखा, लिखा है, लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे। फिर हम देखते हैं कि अंजीर का दरख्त अपनी कोंपले निकाल चुका है और दूसरे दरख्त भी अपनी अपनी शाखें निकाल रहे हैं। मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन और बाकी सब भी अपनी अपनी शाखें निकाल रहे हैं और एक बड़ी बेदारी जारी है। मेरा ईमान है कि खुदा इस आखिरी वक्त में दुल्हन यानी बरगजीदों को जमा कर रहा है। ओ मेरे खुदाया, अब तवज्जो करें। अब आए जरा इस बात पर गौर करें कि यूहन्ना ने क्या देखा और वो चीजें क्या हैं जो उसने देखी हैं। एक लाल घोड़ा और उसका सवार निकला, जिसको इख्तियार दिया गया और एक बड़ी तलवार से हलाक करने का इख्तियार दिया गया। अब इसके मुतल्लिक मुझे ये मुकाशवा मिला है। ये फिर शैतान है, लेकिन ये एक बार दूसरे रूप में है। अब हम जानते हैं कि इनका तल्लुक मोरों से है, बल्कि जैसा मैंने कल रात कहा था कि नरसिंगों का तल्लुक जंगों से है। अगर आप गौर करें तो ये लोगों और कौमों के दरमियान लड़ाई है। लेकिन आपने ये भी देखा कि उस शख्स के पास तलवार है, उसका तल्लुक कलीसिया से है, जो सियासी जंग है। हो सकता है कि आप ऐसे ना सोचते हो, लेकिन जरा एक मिनट, बल्कि चंद मिनट गौर करें। जरा इन घोड़ों के रंग की तब्दीली पर गौर करें। एक ही सवार है, लेकिन घोड़े बदले हुए रंग के हैं, और घोड़ा एक जानदार है, और जानदार को बाइबल में एक ताकत की अलामत समझा जाता है। वही निजाम एक दूसरे रंग की ताकत पर सवार होकर आता है और सफेद मासूमियत से खून की तरह सुर्ख रंग में बदल जाता है, समझे? अब इसे देखें कि कैसे आ रहा है। खैर, जब उसने पहले शुरू किया तो वो सिर्फ एक छोटी सी तालीम थी जो उनके दरमियान थी, जिसे नकीलियों की तालीम कहा गया। बेशक उसने किसी को हलाक ना किया। अगर आप लिखना चाहें तो ये मुकाशवा 2:6 में है। उसने किसी को कत्ल ना किया। वो सिर्फ एक तालीम थी और वो सिर्फ लोगों के दरमियान महज एक रूह थी, और तब उसने किसी को कत्ल ना किया। ओ, वो उस सफेद घोड़े पर बड़ी मासूमियत से सवार था। खैर, आपको मालूम है, गोया जैसे कह रहा हो कि हमारे पास एक आलमगीर कलीसिया हो सकती है, जिसे हम आलमगीर कलीसिया कह सकते हैं। वो अब भी ऐसा ही कर रहे हैं, ठीक है? देखें, अब हम ऐसा कर सकते हैं। ओ, ये मुकम्मल तौर पर मासूमपन नजर आता है। ओ, ये इंतहाई मासूमपन लगता है। ये तो सिर्फ लोगों का एक ग्रोह है। हम सब इबादत की खातिर बाहम जमा होंगे। देखें, ये कितनी मासूमियत है, लेकिन ये वही सफेद घोड़ा है, समझे? अब देखें, शानो शौकत, बेहतरीन लबास में आरास्ता, तलीम याफ्ता लोग जिनसे आप वाकिफ हैं, और आपको मालूम है जिन्हें आप एक जैसे परों वाले परिंदे कहते हैं। हम एक तरह से इन बातों को बाहम जोड़ेंगे। अगर फलां गरीब टोला, अगर वो किसी बात से ठोकर खाता है, तो खैर कोई बात नहीं, हम बेहतर क्लास के लोगों को गिरजे में लाएंगे, और अगर हम उनमें से खुद को बाहर निकाल सकते हैं तो आपको मालूम है हम अमारों का टोला होंगे और वगैरह वगैरह, और हम इन जैसे निराले लोगों को और इन चीजों को दुरुस्त करेंगे क्योंकि वो इसी किस्म के हैं, और फिर ये उन बेजोड़ लोगों के रहने की जगह नहीं है। आप मेरा मतलब समझ रहे हैं? बस ये हकीकी ईमानदार के लिए वाकई ही अजीब है। लेकिन अब दूसरे अल्फाज में उसने कहा होगा, हम तो एक छोटा सा ग्रुप है या हम एक छोटी सी मजलिस बनाना चाहते हैं जिसे हम अपनी कहकर पुकार सकते हैं। ये फक्त एक तालीम थी जो बड़ी मासूम सी लगती है, गोया जैसे कह रहा हो, ए भाइयों, अजीजों, हमारे अंदर आपके खिलाफ कुछ भी नहीं है, यकीनन कुछ नहीं है, आप दुरुस्त हैं, लेकिन आपको मालूम है कि हम महसूस करते हैं कि हमारे पास बिजनेस और हर चीज है, और अगर हम बाहम मुतहिद हो जाएं तो हम असुदा हो जाएंगे, समझे? बिलाखर जब तक ये ना हो गया वो पस्त होता गया। जी हाँ जनाब, ये है आपस में मिलना जुलना। लेकिन जब ये खौफनाक और फरेबी रूह हो एक इंसान में मुजस्सम हुई, ये रूह मुजस्सम हुई यानी ये तलीमी रूह एक इंसान के अंदर मसीह की जगह सुकूनत पजीर हुई ताकि उसकी परस्तिश हो, तो फिर वो मसीह की मानित परस्तिश कराने लगी। दूसरे लफ्जों में वेटिकन में मैं वहाँ जा चुका हूँ, वहाँ वकेलियस फिलेडिया रोमन हरूफ में लिखा हुआ है। अब देखें, आप जरा इन रोमन हरूफ के नीचे एक लकीर खींचें, तो इसका मतलब है खुदा के बेटे का कायम मकाम। दूसरे अल्फाज में वो एक वाइकर है। आप जानते हैं कि वाइकर कौन होता है? वो जो किसी की जगह लेता है, और वो खुदा के बेटे की जगह वाइकर है। और बाइबल कहती है कि जिसमें हिकमत हो वो सहवान के अदद को गिन ले, क्योंकि ये इंसान का अदद है और उसका अदद 666 है। अब अगर आप लफ्ज वकेरिस फिलेडाए को लें और एक लकीर खींचे, तो रोमन अदद जैसे कि वी जिसका मतलब है 5, और फिर आई जिसका मतलब है 1, और फिर बाकी सब का शुमार करें और गौर करें, तो आप 666 हासिल करेंगे। बाइबल कहती है कि वो खुदा के मकदस में बैठेगा और खुदा की मानित प्रस्तिश कराएगा। जब वो छोटी सी तालीम इंसानी जामे में सुकूनत पजीर हुई, तो फिर वो वाइकर बन गया, यानी खुदा के बेटे का कायम मकाम बन बैठा, समझे? वो मेरे खुदा, वही खौफनाक और फरेबी रूह। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं, तो इस बात को दूसरा तसालिकियों 2:3 में पढ़ लें, और फिर आप समझ सकते हैं कि ये कहाँ है। और बेशक आपको याद होगा कि शैतान हर कौम की सियासी ताकत का सरबराह है। कितने लोग इस बात को जानते हैं? अगर आप इसे लिखना चाहते हैं, तो ये मत्ती 4:8 में है। शैतान यीशु को एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उसने पल भर में उसे दुनिया की तमाम सल्तनतें दिखाई जो हैं और जो कभी होंगी। एक शख्स की बाबत बात करते हैं और उसने कहा, अगर तू झुक कर मुझे सिजदा कर दे तो ये सब मैं तुझे दे दूंगा। मगर यीशु जानता था कि वो उनका वारिस बनने वाला है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे लोग कहते हैं, क्यों तुम तो गरीब जनूनियों का टोला हो, क्यों? मगर हमने दुनिया को हासिल करना है। लिखा है हलीम जमीन के वारिस होंगे। ये वो बात है जो यीशु ने कही, समझे? समझे? तवज्जो करें, चूंकि यीशु जानता था कि वो उसकी मीरास होंगी, इसलिए उसने कहा, ऐ शैतान मुझसे दूर हो, क्योंकि लिखा है। आप देखें, ठीक कलाम की तरफ मुड़ा, तू सिर्फ और सिर्फ खुदावंद ही को सजदा कर, समझे? अब देखें, अब जब वो बद्रूहों के सरदार के तौर पर उस फुकल बशर मजहबी आदमी के अंदर समा जाता है, तो जिस तरह बाइबल ने पेशनगोई की है, वो अपनी कलीसिया और रियासत को मुतहद कर लेता है और अपनी दोनों ताकतों को एक साथ जोड़ लेता है, समझे? जब मुखालफ मसीह की रूह आगे बढ़ी तो वो एक रूह थी, इसके बाद वो क्या बन गई? क्या बन गई? अब जरा इस मोहर पर गौर करें, जब ये रूह निकल खड़ी हुई तो ये मुखालफ मसीह की रूह थी और वो मसीह की तालीम के खिलाफ थी, ठीक है? इसके बाद अगला काम जो हुआ, मसीह ने अपनी कलीसिया को गुनाह के खिलाफ रहने के लिए कमर बस्ता किया। ओ, उसने कहा, इसका ये मतलब नहीं, ये किसी और के लिए था, ये बात तो सैकड़ों साल पुरानी है, इसलिए ये हमारे लिए नहीं है, समझे? देखें कि ये मुखालफत है यानी खिलाफ होना। फिर वो इस तरह का बना। अब देखें, जब घोड़सवार बाहर निकलता है तो उसके पास ताज नहीं था, लेकिन बाद में उसको ताज दिया गया। लेकिन जब वो सफेद घोड़े पर था तो उसके पास एक कमान थी, लेकिन तीर नहीं था, समझे। चुनाचे फिर वो आगे बढ़ा, तो फिर कुछ अरसे के बाद उसे एक ताज दिया गया। क्योंकि आप एक रूह के सर पर ताज नहीं पहना सकते, लेकिन फिर ये रूह अपने दूसरे मकाम पर या अपने दूसरे बातनी मरले में दाखिल हुई और मुजस्सम हुई, और दूसरे मरले में वो ताजदार झूठा नबी बन गया ताकि मुखालफ मसीह की रूह के काम करे। अब देखें, अब हम उसे देखते हैं। अब जब वो ऐसा बनता है तो फिर वो उसको लेता है, बस वो पहले ही ऐसा कर चुका है। इसलिए अब शैतान दुनिया की सियासी कुवतों को कंट्रोल करता है। इसके बाद वो एक ऐसे मकाम पर पहुंच जाता है जहां वो मजहबी कुवतों को काबू कर लेता है, एक आलमगीर कलीसिया की कुवत बना लेता है। मेरे भाइयों, देखें, क्या आप समझ नहीं रहे। जैसा कि जब ये कौम मुकाशवा के 13वें बाप के अंदर जाहिर होती है तो ये एक छोटे से जानवर बरे की मानद खड़ी हुई है, और इसके दो सींग हैं, एक सीवल और दूसरी कलीसियाई कुवत। लेकिन इसने भी वही काम किया जो इससे पहले हवान ने किया था। ये नहायत ही अजीब बात है कि अमरीका का आदत 13 है, जो कि औरत का आदत है। और तज्जुब ये है कि ये मुकाशवा के 13वें बाप के अंदर रूनमा हुआ है। हमने अपने झंडे को 13 धारियों और 13 सितारों के साथ शुरू किया। हर एक चीज 13, 13, 13 और 13 पर मुश्तमिल है, और हर एक चीज औरत पर मुश्तमिल है। बिलाखर ये खत्म हो जाएगा। मैं पेशनगोई करता हूँ कि औरत इस पर कंट्रोल करेगी। याद रखें कि मैंने 30 साल पहले ये बात कही थी, और 7 बातें जिनकी मैंने पेशनगोई की थी उनमें से 5 अब तक पूरी हो चुकी हैं। और अब उन्होंने एक ऐसे आदमी को हासिल कर लिया है जो औरत को आगे लाएगा, और आपने अपनी सियासत के जरिए उसे वोट दिया है। जी हाँ, ठीक है, बहुत कुछ कहा जा सकता है। आप बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन आप मुश्किल से समझ सकते हैं। अब जरा गौर करें, मैं आपको ज्यादा देर तक नहीं रोकना चाहता, क्योंकि मुझे कल रात भी मुनादी जारी रखनी है। देखें, तवज्जो करें कि शैतान अब क्या हर शख्स जानता है कि दुनिया की तमाम सियासी ताकतों को शैतान कंट्रोल करता है। उसने ऐसा ही कहा था, और मत्ती के 4थे बाब की 8वीं आयत में आप इस बात को देख सकते हैं, लिखा है कि ये सारी सल्तनतें शैतान के साथ ताल्लुक रखती हैं। यही वजह है कि वो लड़ाइयाँ और जंगे करके कत्ल करते हैं। अब याद रखें, क्या ये अजीब बात नहीं है, उनको तलवार दी गई ताकि वो एक दूसरे को कत्ल करें। ओ मेरे खुदा, अब गौर करें। अब जब उसने ऐसा काम शुरू किया तो उस वक्त उसके पास मजहबी कलीसियाई ताकत ना थी, बल्कि उसने झूठी तालीम की बदरू के साथ शुरू किया, जो बिलाखर एक तालीम की शक्ल इख्तियार कर गई, और फिर वही तालीम एक झूठे नबी के अंदर समा गई, और फिर वो एक ठीक मकाम तक पहुंचा। अब देखें, वो इसराइल में नहीं गया, बल्कि वो रोम गया, नासियाई रोम में दाखिल हुआ। वहाँ एक मजलिस हुई जिसमें उन्होंने एक हेड बिशप का चुनाव किया, और फिर इस तरह करने से उन्होंने रियासत और कलीसिया को मुतहद कर दिया। इसके बाद उसने कमान को नीचे फेंक दिया, और वो अपने सफेद घोड़े से उतरा और अपने लाल घोड़े पर सवार हो गया, ताकि वो हर उस शख्स को कत्ल करे जो उसके साथ मुत्तफिक नहीं है। ये है आपकी मोर, ये एक ही शख्स है। आप इसको उसके साथ ही अब्दियत तक जाते हुए देखें, गौर करें। वो अपनी दोनों ताकतों को बाहम जोड़ता है, आज भी बिल्कुल वही काम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक अजीब बात है, और हो सकता है कि आप इसे ना समझते हों, लेकिन आज आपने रेडियो पर सुना होगा कि लुइसविल की एक बैप्टिस्ट कलीसिया में क्या हुआ, एक मुनाद खड़ा हुआ। और अच्छा, कितने लोगों ने इस बात को सुना है, ठीक है, समझे, ठीक है, इस मकाम पर है। वो कुछ यूँ चाहते हैं, उन्होंने इस सिलसिले में कलीसिया से पूछा, ओ, उन्होंने कहा कि हमें हकीकत में कैथोलिक कलीसिया में शामिल होने की जरूरत नहीं, लेकिन हम उनके साथ रफाकत रखेंगे। सुना, और ठीक इस वक्त जब ये बात लुइसविल के अंदर हो रही थी, तो खुदा यहाँ इन मोरों को अपने लोगों पर आश्कारा कर रहा है कि ऐसा मत करें। क्या इन दोनों को बाहम मिलकर काम करते हुए देख रहे हैं? याद रखें, कश्ती में कौवा और कबूतर एक ही जगह पर थे। यकीनन फक्त इस बात को याद रखें। अब हमने देखा है कि वो अपनी कुवत को मुतहद करता है, और फिर जब वो रियासत और कलीसिया बन जाता है, तो कलीसिया इख्तियार पाता है, तो फिर आप क्या करेंगे? उसने अपना एक मजहब बना लिया है और जो कुछ उसका जी चाहता है वो कर सकता है। फिर जो कोई उसके साथ मुत्तफिक नहीं होता वो उसको मौत की नींद सुला देता है, और ठीक यही काम है जो उसने किया। उसने बिल्कुल यही काम किया, उसने यही किया। उसने जिंदा खुदा के हकीकी मुकद्दसों के साथ, जो कलाम के साथ चलते थे और उसके अकायद के साथ मुत्तफिक नहीं थे, ऐसा ही किया। उसने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। अब यहाँ भाई लीवेल और दीगर उस्ताद जो नासिय कौंसिल और इब्तदाई कलीसिया की तारीख से वाकिफ हैं, तशरीफ रखते हैं। मैं नहीं जानता कि आपने इसको पढ़ा है या नहीं। अगर आप इसे पढ़ना चाहें तो आप स्मीकर्स की ग्लोरियस रिफॉर्मेशन की किताब को लें, तो आपको मालूम होगा कि मुकद्दस अगस्टिन को, जो कि हिप्पो का रहने वाला था, उसको रोमन कलीसिया के तहत कहानत करने का मौका मिला, और एक मर्तबा पाकरू ने उस पर ठहरना चाहा, तो उसने उसको रद्द कर दिया। उस्ताद होते हुए कितने इस बात को जानते हैं। बस उसने पाकरू को रद्द कर दिया, और बिल्कुल उसी तरह आज वो प्रोटेस्टेंट कलीसिया की मिसाल है जिसने रूल कदुस को रद्द कर दिया है। वो हिप्पो में वापस गया और वाहिद वही एक शख्स था जिसने उस कागज पर दस्तखत किए जिस पर लिखा था, ये मुकाशवा खुदा की तरफ से मिला है और ये बिल्कुल दुरुस्त है और खुदा का पसंदीदा है। इसलिए जो शख्स रोमन कैथोलिक जैसा ईमान नहीं रखता उसको मौत के घाट उतार दिया जाए। अब सुने, मैं कत्लो गारत के हवाले पेश करने लगा हूँ। हिप्पो के मुकद्दस अगस्टिन से लेकर 1586 तक की रोमी कत्लो गारत की तवारीख बताती है, इस दौरान रोमन कैथोलिक कलीसिया ने 6 करोड़ और 80 लाख प्रोटेस्टेंट लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। क्या उसकी तलवार लाल थी? क्या वो लाल घोड़े पर सवार था? ये क्या था? वही ताकत और वही सवार था। ये मोहर है। इसलिए वो 68 मिलियन लोगों के कत्ल को कबूल करते हैं, और ये कत्लो गारत उन सब के अलावा है जिनको तवारीख में अयान नहीं किया गया। हो रहम हो, देखें तारीख जमानों में लाखों लोगों को शेरों के आगे फेंका गया और हर तरह से कत्ल किया गया, क्योंकि वो कैथोलिक अकीदे के सामने नहीं झुकते थे, और आप इस बात से वाकिफ हैं। आपके पास कितना वक्त है?
बहुत अच्छा, फिर मुझे थोड़ा सा पढ़ने दे, तो मेरे साथ पढ़ें। मुझे इजाज़त दें कि मैं आपको कुछ दिखा सकूं। आए एक मिनट के लिए, इसकी तस्वीर खींचें। ये अभी मेरे जेन में आई है, इसलिए हम इसको पढ़ेंगे। तो आए फिर मुकाशवा की किताब, मुकाशवा 17वें बाब को निकालें। अभी हमारे पास 15 मिनट बाकी है, ठीक है। अब जो ही हम पढ़ते हैं तो इसे खूब गौर के साथ सुने। आप लोग जिनके पास बाइबल है वो निकाले, मैं आपको थोड़ा सा वक्त दे रहा हूँ, बस आप इसे निकाल लें। ली, क्या आपने ये निकाल लिया है?
मैंने ये स्मीकर से हासिल किया था। देखें, ग्लोरियस रिफॉर्म से, जो ब्राह रास्त वेटिकन रोम शोधा की तवारीख में कलमबंद है।
अब ये बात मुकद्दस पैट्रिक के लोगों की अजियत में मिलती है। बाद अजां वो मुकद्दस पैट्रिक को अपना मुकद्दस कहने लगे। जी हाँ, मुकद्दस पैट्रिक इतना ही कैथोलिक था जितना कि मैं हूँ, और आप जानते हैं कि मैं कितना कैथोलिक हूँ, समझे।
उसने कैथोलिक कलीसिया की तालीम से सख्त नफरत की और उसने पोप के पास जाने से इनकार कर दिया।
जी हाँ जनाब, हत्ता के मुकद्दस पैट्रिक, क्यों, क्या आप कभी शुमाली आयरलैंड गए हैं जहाँ उसके नाम से स्कूल है? क्या आपको इल्म है कि उसका नाम पैट्रिक नहीं था?
इतने हैं जो इस बात को जानते हैं कि उसका नाम सोकेट था।
ये दुरुस्त है, वो अपनी छोटी बहन को खो बैठा था। क्या आपको याद है कि जब वो, समझे,
ठीक है। अब मुकाशवा के 17 बाब को निकालते हैं और देखते हैं। अब हर एक अपना दिल खोलने की कोशिश करे, ताकि अब रूल कदुस आपको सिखाए। और उन 7 फरिश्तों में से जिनके पास 7 प्याले थे, एक ने आकर मुझसे कहा, इधर आ। अब आप देखें, यहाँ 7 प्याले हैं, और आप जानते हैं जैसा कि हम इन 7 मोहरों पर गौर कर रहे हैं, और ये सब एक ही वक्त में वकूफ में आते हैं, और आफ्तों और कलीसिया जमानों के पीछे पीछे ये सब बिल्कुल एक ही किताब के अंदर मोहर बंद कर दिए गए हैं, और हर एक बात दायरे के अंदर घूम रही है, एक दूसरे के अंदर और दूसरी तीसरे के अंदर और तीसरी चौथे के अंदर। देखें, दो रूहें काम कर रही हैं, खुदा और शैतान, समझे। जिनके पास 7 प्याले थे, एक ने मुझसे आकर कहा कि इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी कस्बी की सजा दिखाऊं जो बहुत से पानियों पर बैठी हुई है। अब यहाँ देखें कि पानियों का क्या मतलब है। और ये कस्बी क्या है? ये एक औरत है, ये मर्द नहीं हो सकती। और बाइबल में औरत को किसकी अलामत कहा गया है? कलीसिया की। क्यों? इसलिए कि मसीह की दुल्हन और वगैरह वगैरह। आप गौर करें कि ये औरत कलीसिया है। अब पानियों का क्या मतलब है? यहाँ तवज्जो करें, इसकी 15वीं आयत को पढ़ें। फिर उसने मुझसे कहा कि जो पानी तूने देखे जिन पर वो कस्बी बैठी है, वो उमते और ग्रोह और कोमे और अहले जुबान है। ये कलीसिया तमाम दुनिया पर हुक्मरानी कर रही है। देखें, वो बहुत से पानियों पर बैठी हुई है और जिसके साथ जमीन के बादशाहों ने हरामकारी की थी। देखें, ये रूहानी हरामकारी है और उसकी तालीम यानी नकीलियों की तालीम को अपना लिया और जमीन के रहने वाले उसकी हरामकारी की मैं से मतवाले हो गए थे। लड़के, तुम इस पर मतवाले ग्रोह की बात करते हो? तुम सुनो। बस वो मुझे रूह में जंगल को ले गया। वहाँ मैंने एक औरत को देखा। क्या आप इस बात को जानते हैं? कैथोलिक लोगों की अपनी तसनीफ इस बात को कबूल करती है कि ये उनकी कलीसिया है। कितने हैं जो इस बात को जानते हैं? ये ठीक उनकी तसनीफ में है। मेरे पास उनकी एक किताब है जिसे वो हमारे ईमान की हकीकत कहते हैं, उसमें ये मौजूद है। अब समझे, ये एक प्रीस्ट के पास होती है। ये ठीक बात है। ठीक है, बस वो मुझे रूह में जंगल को ले गया। वहाँ मैंने किरमिजी रंग के हवान पर, जो कुफर के नामों से लिपा हुआ था और जिसके 7 सर और 10 सिंह थे, एक औरत को बैठे हुए देखा। अब जरा इस निशान को देखें कि 7 सर हैं। अब आप देखें, यहाँ लिखा है और वो 7 सर 7 पहाड़ हैं जिन पर वो औरत बैठी हुई है। रोम का शहर 7 पहाड़ों पर है, समझे। अब इस बयान में कोई गलती नहीं है। देखें, 7 सर और 10 सिंह, आप जानते हैं ये 10 बादशाहियां हैं और वगैरह वगैरह। ये औरत अरगवानी और किरमिजी लिबास पहने हुए थी और सोने और जवाहर और मोतियों से आरास्ता थी और एक सोने का प्याला मकरूहात उसकी हरामकारी की नपाकियों से भरा हुआ था जो उसके हाथ में था। मुखालफ मसीह की रूह हरामकारी है। देखें, उसकी तालीम खुदा के खिलाफ हरामकारी है। अब देखें कि उसे एक दुल्हन होना चाहिए था, लेकिन वो जनाकारी कर रही है, समझे। जिस तरह हवा ने किया उसी तरह ये कलीसिया कर रही है, समझे। और उसके माथे पर ये नाम लिखा था, राज बड़ा शहर बाबल। और कोई भी जानता है कि बाबल रोम है, कस्बियों और जमीन की मकरूहात की माँ। अब 6वीं आयत को सुने, और मैंने उस औरत को मुकद्दसों का खून और यीशु के शहीदों का खून पीने से मतवाला देखा और उसे देखकर सख्त हैरान हुआ। वो सलीबों और दूसरी चीजों से इस कदर सजी थी कि वो दुनिया में मुकद्दसों का खून पीने की किस तरह मुजरिम हो सकती थी। इस बात ने उसे हैरान कर दिया, इसलिए अब वो उसको बताने लगा। उस फरिश्ते ने मुझसे कहा, तू हैरान क्यों हो गया? मैं इस औरत और इसका जिस पर वो सवार है तुझे भेद बताता हूँ। अब ये बात मोहरों में से किसी भी मोहर में नहीं आई। देखें, ये कुछ मुख्तलिफ बात है। और उसने कहा, ये 7 सर और 7 सिंह, बल्कि ये जो तूने हवान देखा, ये पहले तो था मगर अब नहीं है, और ऐंदा अथाह गड़े से निकलकर, देखें, पोप की कोई बुनियाद नहीं है, हलाकत में पड़ेगा, और जमीन के रहने वाले जिनके नाम बनाए आलम के वक्त से, देखें, यहाँ बरगजीदा हैं, बर्रा की किताबे हयात में लिखे नहीं गए। अब देखें, कब आपका नाम किताबे हयात में लिखा गया था? क्या जब आप बेदारी में गए थे? नहीं जनाब, बल्कि बनाए आलम से पेशतर। और वो हैवान का ये हाल देखकर कि पहले था और अब नहीं और फिर मौजूद हो जाएगा, तअज्जुब करेंगे। इस हैवान को देखें, एक हैवान मरेगा तो दूसरा उसकी जगह ले लेगा। पहले वो था, अब वो नहीं, पहले वो था और अब वो नहीं, पहले था अब वो नहीं, और वो कलीसिया इसी तरह हलाकत में पड़ेगी, समझे। ठीक है, यही मौका है उस जहन का जिसमें हिकमत है। इतने हैं जो इस बात को जानते हैं कि रूह की 9 नेमते हैं और उनमें से एक हिकमत है। ठीक है, वो 7 सर 7 पहाड़ हैं जिन पर वो औरत बैठी हुई है। ओ, अगर आपको इस बात की अभी भी समझ नहीं लगी तो फिर आप सिरे से ही अंधे और बहरे और गूंगे हैं, समझे। ये ठीक है, और वो 7 बादशाह भी हैं, 5 तो हो चुके हैं और एक नीरो है और एक अभी आया नहीं, और जब आएगा तो कुछ अरसा तक उसका रहना जरूर है। आपको याद है कि उसने क्या किया? उसने शहर को जला दिया था और उसका इल्जाम मसीहों पर लगा दिया था, और उसने अपनी माँ को एक घोड़े के पीछे बल्ली पर बांधकर सारे शहर की सड़कों पर घसीटा था, और जब रोम जल रहा था तो वो सरंगी बजा रहा था। ठीक है, और जो हैवान था और अब नहीं, वो 8वां है। बुत प्रस्त रोम को पापाई रोम की शक्ल दे दी गई, और ये उस वक्त हुआ
جب مخالف مسیح کی روح مجسم ہو کر تاج پہنتی ہے، اس کو ریاست اور کلیسیا میں ایک ساتھ روم کا تاجدار بادشاہ بنا دیا گیا۔ او بھائی، دیکھیں وہ اس قوت سے پر ہے، سمجھے؟ یہ حیوان ان ساتوں میں سے ایک ہے، اور یہ آخر کب تک رہے گا؟ انہوں نے کبھی نظام کو نہیں بدلا، اس لیے یہ ہلاکت کو پہنچے گا۔ اور 10 سنگھ جو تو نے دیکھے ہیں، 10 بادشاہ ہیں جنہوں نے ابھی تک بادشاہی حاصل نہیں کی، لیکن اس حیوان کے ساتھ گھڑی بھر کے واسطے بادشاہوں کا سا اختیار پائیں گے۔ بے شک آپ دیکھیں، یہ ڈکٹیٹر ہیں اور ان کی ایک ہی رائے ہوگی۔ اب یہاں دیکھیں، اور یہ کمیونزم کی بات نہیں ہے، سمجھے؟ ان کی ایک ہی رائے ہوگی، اور یہ اپنا اختیار اور قدرت اس حیوان کو دے دیں گے۔ وہ برا سے لڑیں گے، اور برا ان پر غالب آئے گا، کیونکہ وہ خداوندوں کا خداوند اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور اس کے ساتھ بلائے ہوئے اور برگزیدہ اور وفادار بھی ہیں، وہ بھی غالب آئیں گے۔ پھر اس نے مجھ سے کہا کہ جو پانی تو نے دیکھے، جن پر کسبی بیٹھی ہوئی ہے، امتیں اور گروہ اور قومیں اور اہل زبان ہیں، اور جو 10 سنگھ تو نے دیکھے، وہ اور حیوان اس کسبی سے عداوت رکھیں گے، اور وہ عہد ٹوٹ جائے گا، جیسا کہ گزشتہ رات میں نے اس کے متعلق بتایا، اور اسے بے کس اور ننگا کر دیں گے، اور اس کا گوشت کھا جائیں گے، اور اس کو آگ میں جلا ڈالیں گے۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ بائبل کہتی ہے جہازوں کے مالکوں اور باقی لوگوں نے کہا، افسوس افسوس، وہ مضبوط شہر گڑی بر میں تباہ ہو گیا، سمجھے؟ کیونکہ خدا ان کے دلوں میں یہ ڈالے گا کہ وہ اس کی رائے پر چلیں، اور جب تک کہ خدا کی باتیں پوری نہ ہو لیں، وہ متفق رائے ہو کر اپنی بات سے اس حیوان کو دیں گے۔ اور وہ عورت جسے تو نے دیکھا، وہ بڑا شہر ہے جو زمین کے بادشاہوں پر حکومت کرتا ہے۔ مجھے کوئی بتائے، دیکھیں، روس تمام دنیا پر حکومت نہیں کرتا ہے، اور نہ ہی ہم تمام دنیا پر حکومت کرتے ہیں۔ صرف ایک ہی بادشاہ ہے جو تمام دنیا پر راج کر رہا ہے، جیسے کہ یہ نبوکدنضر کے لوہے کے بازو کی مانند ہے جو ہر ایک کے ٹخنے کی طرف بڑھتا ہے۔ یہ روم ہے۔ روم بطور قوم نہیں، بلکہ بطور کلیسیا کام کر رہا ہے۔ ہر قوم جو آسمان کے نیچے ہے، روم کے محتاط ہے۔ کوئی تعجب نہیں کہ انہوں نے کہا کہ کون اس سے جنگ کر سکتا ہے، مگر وہ کہہ سکتا ہے امن ہو، تو پھر ایسا ہی ہو جاتا ہے۔ اگر کیتھولک کلیسیا کہتی ہے کہ جنگ مت کرو، اور وہ جنگ نہیں کرتے، بس یہ بات ہے۔ کون ہے جو اس کی مانند کام کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ یہ درست ہے۔ چنانچہ وہ ان معجزات پر حیران ہوتے ہیں جو وہ کر سکتا ہے۔ وہ جنگ ختم کر سکتا ہے، ایک ہی کام ہے جو اسے کرنا ہے۔ وہ صرف کہتا ہے کہ روک دو، بس یہی ساری بات ہے۔ لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایسا کرے گا؟ یقیناً نہیں۔ غور کریں کہ یہ یقیناً اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو قتل کریں، وہ ایک دوسرے کو قتل کریں۔ ابتدا میں اس کی کمان میں تیر نہیں تھا، لیکن اس کی بڑی تلوار نے ایسا کیا، اور بعد ازاں اس نے قتل کرنا شروع کیا، اور وہ سفید سے اتر کر لال گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ یہ ٹھیک ہے، وہی شیطان ہے جس کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ یسو نے کیا کہا؟ یسو نے کہا، جو تلوار سے قتل کرتے ہیں وہ تلوار سے قتل کیے جائیں گے، مت لڑے، سمجھے؟ دیکھیں، اس رات جب پترس نے اپنی تلوار کھینچی تو یسو نے کہا، بلکہ اس نے یہی بات بتائی تھی، سمجھے؟ ویسے ہی کریں جیسے اس نے کیا، اور آگے بڑھیں۔ اب یاد رکھیں کہ اس کے پاس ایک تلوار ہے، اور وہ اپنی تلوار لیے ہوئے آگے بڑھتا ہے، اور وہ لال گھوڑے پر سوار ہوتا ہے، اور ان تمام لوگوں کا خون کرتا ہے جو اس کے ساتھ متفق نہیں ہوتے۔ کیا آپ اس کو سمجھ گئے ہیں؟ کتنے لوگ سمجھ چکے ہیں اس مہر کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے، اب دیکھیں یسو نے کیا کہا، جو تلوار سے قتل کرتے ہیں وہ تلوار سے قتل کیے جائیں گے۔ کیا یہ سچ ہے؟ بہت اچھا، ٹھیک ہے۔ یہ سوار اور اس کی بادشاہی کے تمام لوگ جو زمانوں سے قتل کر رہے ہیں، اور جنہوں نے مقدسوں کے خون کو اور اس کے ساتھ مل کر بہایا ہے، یسو کے آنے پر اس کی تلوار سے قتل کیے جائیں گے۔ جو تلوار کو چلاتے ہیں وہ تلوار سے قتل کیے جائیں گے۔ انہوں نے عقیدے اور مخالف مسیح کی تلوار کو لیا، اور ہر زمانے میں لاکھوں لاکھ سچے اور حقیقی پرستاروں کو قتل کر دیا، اور اب مسیح اپنی تلوار کے ساتھ آئے گا، اور وہ اس کا کلام ہے جو اس کے منہ سے نکلتا ہے، اور وہ اس کے ساتھ ہر دشمن کو جو اس کے سامنے ہے غارت کرے گا۔ کیا آپ اس پر یقین رکھتے ہیں؟ دشمن کو ہلاک کرے گا۔ آئیں ذرا ایک منٹ کے لیے مکاشوا میں چلتے ہیں، اس کو پڑھ کر دیکھیں گے کہ کیا یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں یا پھر یہ بات کلام کہتا ہے۔ مکاشوا 19:11، پھر میں نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا، آمین، اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے، اور اس پر ایک سوار ہے جو سچا اور برحق کہلاتا ہے، اور وہ راستے کے ساتھ انصاف اور لڑائی کرتا ہے، اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلے ہیں، اور اس کے سر پر بہت سے تاج ہیں۔ او بھائی، آپ دیکھیں اور غور کریں کہ اس کو اس کے مقدسوں نے تاج پہنایا،
और उसका एक नाम लिखा हुआ है जिसे उसके सिवा कोई और नहीं जानता। याद रखें कि हम उसे नहीं जान सकते। देखें, हम उसे नहीं जानते कि वो क्या है। वो पोशाक पहने हुए है, आए देखते हैं, और वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए है, और उसका नाम ये नहीं लिखा कि वो है, बल्कि कहलाता है, कलाम में खुदा कहलाता है, क्योंकि वो और कलाम एक है। समझे? अब तवज्जो दें, ना कि उसका नाम, जी हाँ, बल्कि उसका नाम कलाम में खुदा कहलाता है। वो सिर्फ एक ही नाम को जानता है और किसी दूसरे नाम को नहीं जानता। और आसमान की फौजें सफेद घोड़ों पर सवार और सफेद और साफ महीन कपड़े पहने हुए उसके पीछे हैं। ये मुकद्दसों की रास्तबाजी है, समझे? अब ध्यान दें, यीशु ने क्या कहा? जो तलवार खींचता है, ठीक है, लाल घोड़े का सवार यही है जो यहाँ आ रहा है, जो तलवार खींचता है। उस वक्त गुज़िश्ता ज़मानों में तूने उनमें से 68 मिलियन को कत्ल किया या शायद इससे भी बढ़कर, लेकिन यीशु ने कहा जो तलवार खींचता है वो तलवार से हलाक किया जाएगा। तवज्जो दें, लिखा है उसके मुंह से एक तेज तलवार निकलती है। इब्रानियों के चौथे बाब में कहा गया है कि खुदा का कलाम हर एक दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है और जान और रूह और बंद बंद और गुदे को जुदा करके गुजर जाता है। इसके अलावा कलाम क्या करता है? दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है, ठीक है? और उसके मुंह से दो धारी बल्कि कौमों को मारने के लिए एक तेज तलवार निकलती है और वो लोहे के आसा से उन पर हुकूमत करेगा और कादर मुतलिक खुदा के सख्त गजब की मैं के हाउस में अंगूर रोंदेगा और उसकी पोशाक और रान पर ये नाम लिखा हुआ है, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद। खुदा के कलाम के खिलाफ दगाबाज की हैसियत से, चूंकि वो इस बात पर मुत्तफिक नहीं हुए, तो शैतान ने उसके दिल में ये बात डाली कि वो सियासी ताकत जिस पर वो काबिज था और रूहानी ताकत जो उसके पास थी, दोनों को मिलाकर एक ऐसी कलीसिया बनाए जो तमाम दुनिया के अंदर फैल जाए। वो अपने सफेद घोड़े से छलांग लगाकर अपने लाल घोड़े पर सवार हुआ और इसके बाद उसने अपनी तलवार ली और आगे बढ़ा और उसने करोड़ों लोगों को कत्ल किया। लेकिन खुदा ने कहा, जिस कलाम को उसने झूठी तालीम के साथ बिगाड़ने की कोशिश की, वही कलाम जो यीशु मसीह के होंठों से निकलकर कुदरत के साथ उठ खड़ा होगा और उसको और जो कुछ यीशु के सामने आएगा हलाक कर देगा। आमीन। ये दूसरी मोहर है, क्या आप उससे प्यार करते हैं? ओ मेरे खुदाया, ये खुदावंद यूं फरमाता है, खुदा की तारीफ हो। देखें, ये सब मुकाशफात और रोयाएं और हर एक चीज ठीक नुक्ते पर आकर बैठती है। कितने लोग इस बात को जानते हैं? अपना हाथ ऊपर उठाएं। सैकड़ों, बल्कि यहाँ हर एक ने अपना हाथ उठा लिया है। ये सच है, ये इसी तरह होगा। याद रखें, ये ऐसे ही है। ओ दोस्तों, उस चश्मे के पास आएं जो खून से भरा है और जो इमानुएल की नसों से निकला है, जहाँ गुनाहगार उस खून के नीचे गोताजन होते हैं और उनके गुनाहों के दब्बे मिट जाते हैं। आएं, अगर आपने अब तक कुछ नहीं किया तो आज उस पर ईमान लाएं। कोई और मजीद मौका ना लें। दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में कुछ है तो इस मौके को मत गंवाएं। हम यहाँ मौजूद हैं और कुछ होने वाला है। मैं नहीं जानता क्यों, मैं नहीं जानता कि कब। मैं ये जानता हूँ कि जो कुछ होने वाला है, लेकिन ये इल्म नहीं कि कब होगा, क्योंकि वो इस वक्त जाहिर कर रहा है। इसलिए ये बात वकूम में आने को है और उस वक्त तक कुछ नहीं करता जब तक पहले उसको आश्कारा न करे। आमोस 3, पहले वो इन बातों को आश्कारा करता है। उसने वादा किया है कि ये बातें आखिरी दिनों में जाहिर होंगी और पयंबर के आने पर, सातवें कलीसिया जमाने के खात्मे पर वकूम में आएंगी। ये बातें जाहिर होंगी और ये मोहरें जाहिर होंगी और ये यहाँ मौजूद है। अब देखें, ये खुदावंत के नाम में मैं कहता हूँ, दोस्तों उस पर यकीन करें। जी हाँ जनाब, बाबल से बाहर निकल आए। मैं इबादत खत्म होने से पहले कुछ बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 9:30 बजे का वक्त है और तकरीबन वक्त हो चुका है। जब बिली और मैं अपने पिछले दौरे पर इंडिया गए और जब जहाज से उतरे तो एक अखबार को देख रहा था जो उन्होंने मुझे दी थी और वो इंग्लिश में तहरीर थी और उसमें लिखा था जलजला यकीनन खत्म हो जाना चाहिए क्योंकि परिंदे वापिस आ रहे हैं और फिर उसके नीचे तफसील लिखी थी। वो वहाँ कुछ मजाया बात हुई थी। इंडिया में जाली की दीवारें नहीं होती हैं जैसे कि हमारे यहाँ हैं और वो पत्थर लेते हैं और अपने लिए चार दीवारी बनाते हैं और वो अपने मकान ज्यादातर पत्थरों से बनाते हैं और उन्हें एक दूसरे के ऊपर रखते हैं। ओ और तकरीबन इंडिया में सिवाय पहाड़ी इलाकों के हर जगह गर्मी होती है और कलकत्ता से होते हुए हर जगह लोग सड़कों पर पड़े होते हैं और भूख से मर रहे होते हैं और वगैरह वगैरह। बस अब वो अपने घरों को बुलंदोबाला इमारतों की सूरत में बनाते हैं और वो अपने घर की तरफ एक बाड़ लगाते हैं और वो अपने घर के लिए एक बुर्ज बनाते हैं और वो बुर्ज किसी ऐसी जगह पर बनाते हैं जहां उन्हें अपने लिए कुआं मिल जाए या फिर उसे अपने मवेशी और दूसरी चीजों के लिए खोद लेते हैं और फिर उसके चौगिर्द बाड़ लगा देते हैं और फिर अचानक कुछ वाक्य होने लगता है। आप जानते हैं छोटे परिंदे उन पत्थरों में जाते हैं और अपने लिए घोंसले बनाते हैं और अपने बच्चों को पालते हैं और कुछ वाक्य होने लगता है। और हर उस दिन जब गर्मी बढ़ जाती है तो तमाम मवेशी इकट्ठे होकर उन दीवारों के साए के तले खड़े हो जाते हैं ताकि ठंडक हासिल करें और वो तमाम छोटे छोटे परिंदे भी उन्हीं जगहों में रहते हैं और फिर अचानक ही वो तमाम छोटे छोटे परिंदे किसी नामालूम वजह से, अब आप जानते हैं कि अगले रोज हमने उन छोटे छोटे परिंदों के मुतल्लक क्या कहा था समझे, किसी नामालूम वजह से वो तमाम वहाँ से उड़ गए और वो वहाँ से बाहर निकल गए और फिर वापिस अपने घोंसलों में ना आए। वो खेतों में चले गए और उन्होंने दरख्तों पर बसेरा कर लिया और उन्हीं खेतों में रहे जहाँ उन्हें कुछ मिल सकता था और फिर मवेशी भी दीवारों के गिर्द ना आए, भेड़े भी उसके गिर्द ना आई, वो खेतों ही में रहे और एक दूसरे का सहारा लिया। ये एक अच्छा तरीका था, वो जान गए कि कोई चीज वाकया होने वाली है। फिर अचानक ही एक जलजला आया और उसने दीवारों और उस बाड़ों को और बाकी सबको नीचे गिरा दिया। इसके बाद उन छोटे परिंदों ने वापिस आना शुरू किया लेकिन वो तीन या चार दिन के लिए वापिस ना आए। इसके बाद उन्होंने वापिस आना शुरू किया इसलिए उन्होंने अखबार में लिखा खैर अब जलजला खत्म हो चुका है क्योंकि परिंदे वापिस आ रहे हैं। तो फिर क्यों आप ईमान नहीं रखते कि बिल्कुल वही खुदा जिसने उन परिंदों उन मवेशियों और उन भेड़ों को नूह के दिनों में कश्ती में दाखिल किया वो अब भी वही खुदा है जो इन परिंदों को बचने के लिए उड़ा सकता है? क्या ये सच है? भाइयों अब मुझे कुछ कहने दे क्योंकि अब भी कुछ वाकया होने वाला है और ये तमाम बड़ी और पुरानी कलीसियाई दीवारें गिरने वाली हैं और ठीक पीछे जाने वाली हैं और इस बात पर इत्तफाक करता हूँ क्योंकि जिस तरह मैं यकीनी तौर पर यहाँ खड़ा हूँ वो ऐसा करने वाला है और यहाँ पर उस हैवान की मूरत मौजूद है जिस तरह मैं यकीनी तौर पर यहाँ खड़ा हूँ और खुदावंद के कलाम के मुताबिक इस कौम ने अब इसे हासिल कर लिया है। सुने जब आप इस छोटी सी अजीब बात को महसूस करें तो आप इन दीवारों से दूर हो जाएं वरना आप वहाँ मर जाएंगे। ऐसा मत करें बल्कि वहाँ से निकल आएं, ऐसी तमाम चीजों से दूर हो जाएं और जितनी जल्दी आप से हो सकता है बचने के लिए उड़ान लें, रहम के लिए खुदा के तलबगार हो जाएं और कुछ भी मत लें और ना ऐसा कहें। खैर मेरी माँ मेथोडिस्ट थी इसलिए मुझे भी मेथोडिस्ट होना चाहिए, मेरा वालिद बैप्टिस्ट था इसलिए मुझे भी बैप्टिस्ट होना चाहिए। आप ऐसा मत करें, आप ऐसा कोई खतरा ना लें। मुझे इसकी परवाह नहीं कि ये बात आपको कितनी सादी और हल्की लगती है लेकिन ये खुदावंद का कलाम है। जितनी जल्दी आप कर सकते हैं उतनी ही जल्दी यीशु के पास दौड़ जाएं और उस वक्त तक वहाँ ठहरे रहें जब तक खुदा आपको अपने रूह कुद्दुस से नहीं भर देता, क्योंकि वो घड़ी आ रही है जब आप इस कलाम की तलाश करेंगे और ये नहीं मिलेगा। बस ऐसा करने के लिए पुरयकीन हो जाएं। आए जरा एक लम्हे के लिए अपने सरों को झुकाएं। ओ आसमानी बाप, मेरे साथ बाज़ुकात ऐसा होता है कि खुदावंद जब मैं यहाँ खड़ा होता हूँ और मैं कांप जाता हूँ, मैं सोचता हूँ कि वो खौफनाक घड़ी आ रही है और मैं घबरा जाता हूँ क्योंकि उसको रोकने का कोई तरीका नहीं है क्योंकि उसकी पेशनगोई हुई है इसलिए वो घड़ी आएगी और मैं इसके मुतल्लिक सोचता हूँ लोग क्यों नहीं आते और कलाम को क्यों नहीं सुनते और क्या वो नहीं आएंगे और इसे कबूल नहीं करेंगे। लेकिन बिला शुबा मैं जानता हूँ कि ऐसा तूने फरमाया है वो नहीं आएंगे, बस वो नहीं आएंगे। लेकिन कुछ लोग मौजूद हैं जिनके नाम बरा की किताबे हयात में लिखे हुए हैं और जब इन मोहरों को खोला जाता है और रूह कुद्दुस उनसे हम कलाम होता है तो वो अपने नामों को वहाँ देखेंगे और वो आ रहे हैं। आप उनको दूर नहीं रख सकते, कोई एक भी दूर नहीं रह सकता। बहरहाल वो किसी भी तरह आ रहे हैं, क्योंकि तू उनकी रहनुमाई कर रहा है, जिस तरह तूने उन परिंदों और बेड़ों और उन मवाशियों की रहनुमाई की थी, क्योंकि तू खुदा है। कोई तहरीकी जबिल्लत उन जानवरों के अंदर है, जिससे वो जान जाते हैं कि उन्हें दूर हो जाना चाहिए। और अगर एक जानवर के अंदर ऐसी जबिल्लत है जो उन्हें खबरदार कर सकती है कि वो खतरे से दूर भाग जाए, तो फिर रूल कदूस को इस कलीसिया के साथ क्या करना चाहिए जो उससे लबरेज होने का दावा करती है। ऐ खुदा, हम पर रहम फरमा। ऐ खुदावंद, हम सब की कोताहियों को माफ कर दे। मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं कि मैं इस पुलपट पर खड़ा हूँ और ये लोग दीवारों के गिर्द खड़े हों और इनके बदन दर्द हो रहे हों और वो यहाँ से ऐसे ही चले जाएं और कहें, खैर पैगाम बहुत अच्छा था। ऐ खुदावंद, हम इसके मुतल्लिक कुछ करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि तू हमारे दिलों को जांच, और अगर कोई गलती है तो खुदावंद उसे हम पर इसी वक्त जाहिर कर दे। बराए करम हमें उस हद तक ना जाने दे जहाँ बहुत देर हो जाए। मुझे जांच ऐ खुदावंद, मेरी पड़ताल कर। खुदा के फजल से मैं यहाँ खड़ा हूँ और यहाँ आया हूँ ताकि लोगों को इन मोरों के मुतल्लिक बताऊँ जो तूने मुझे दिखाई हैं। जब हफ्तों पहले तूने इनके मुतल्लिक पेशनगोई की कि ये ऐसे होंगी, और अब ऐ बाप ये ठीक यहाँ हमारे सामने हैं। अब ऐ खुदावंद मुझे जांच, मुझे अजमा, मेरे दिल की जांच पड़ताल कर। ऐ खुदावंद, हम नहीं बल्कि हम चाहते हैं कि तू हमारी जिंदगियों पर नजर डाले, और अगर ऐसी बात है जो दुरुस्त नहीं तो खुदावंद फक्त हमसे कलाम कर, हम उसे ठीक अभी ही दुरुस्त करना चाहते हैं। ठीक इसी वक्त जबकि खून से भरा हुआ चश्मा मौजूद है, हाँ जबकि साफ करने वाला एक रंग काट मौजूद है जो हमारे गुनाहों और बेएतकादी को धो सकता है, हम अपनी जानों को उसके नीचे गोता देते हैं और अपनी सारी बेएतकादी को भी। ऐ खुदा, हमारी बेएतकादी का इलाज कर। ऐ खुदावंद, इसे हमसे दूर कर दे। हम उठाए जाने वाला ईमान हासिल करना चाहते हैं, ताकि जब वो पुरअसरार गर्ज की आवाजें आगे चलकर गर्जें और कलीसिया उठाई जाए, तो हम उसको कबूल करने के लिए तैयार रहना चाहते हैं। ऐ खुदावंद, ये अता कर। ऐ खुदावंद, हमें अपने कलाम के जरिए आजमा, हमें इस पर नजर करने दे, और अगर हम देखते हैं कि हम नाकाम हो चुके हैं, ऐ खुदावंद, अगर यहाँ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अलकाब को इस्तेमाल करके बपतिस्मा लिया है और वो हकीकी और असल बपतिस्मे के बारे में कुछ भी नहीं जानते, क्या मैं पालूस की तरह वफादार हो सकता हूँ कि जब वो ऊपर के इलाका से होकर इफिसस में आया तो उसने वहाँ पर शागिर्दों को देखा जो चिल्लाते, शोर मचाते और जलाली वक्त गुजार रहे थे, और उसने उनसे कहा, क्या तुमने ईमान लाते वक्त रूह कुदस पाया है? वो जानते नहीं थे कि रूह कुदस नाजिल हुआ है। तो उसने कहा, फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने उस जलाली और मुकद्दस नबी का बपतिस्मा ले रखा था, लेकिन उन्होंने सिर्फ तोबा का बपतिस्मा ले रखा था। फिर इसके बाद उनको दोबारा यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया गया। पालूस ने उन्हें दोबारा बपतिस्मा लेने का हुक्म दिया। ऐ खुदावंद, तेरे कलाम की रोशनी में मैं हर उस शख्स को जिसने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा नहीं लिया हुक्म देता हूँ कि वो जल्दी से पानी के पास जाए, क्योंकि अभी आपके पास मौका है। आप में से जितने लोग अभी तक रूल कुछ से ममूर नहीं हुए, मैं उनको खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूँ कि वो अपने घुटनों के बल हो जाएं और उस वक़्त तक ना उठे जब तक रूल कुदस आपको पूरे तौर पर मुकद्दस बनाकर अपने प्यार और नेकी से भर ना दे, और जब तक आपकी रूह खुदा की हजूरी में मुतमीन ना हो जाए और आपके अंदर ये ख्वाहिश पैदा ना हो जाए कि आप उसकी खिदमत करें और उसके लिए चलें और अपनी बाकी मांदा जिंदगी उसके साथ मिलकर काम करें। ये अता कर, मेरी दुआ है, खुदा आपको यीशु मसीह के नाम में ये कुव्वत अता करे। मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ, क्योंकि पहले उसने मुझसे प्यार किया। क्या आप सचमुच उससे प्यार करते हैं? अब अपने हाथ ऊपर उठाएं। और कलवरी की सूली पर मेरी निजात खरीदी।
If there's any setting,
अगर यहाँ कोई ऐसा शख्स बैठा है जो आज रात अपनी जरूरत को महसूस करता है और समझता है कि उसको बपतिस्मा लेना चाहिए या उसको रूह कुदस के बपतिस्मे की जरूरत है, आप अपनी जरूरत को जानते हैं क्योंकि ये बात आप पर वाजे कर दी गई है और आप चाहते हैं कि आपको दुआ में याद रखा जाए, तो हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो आपकी जरूरत को पूरा कर सके। ओ, हम आपको सिर्फ बपतिस्मा दे सकते हैं, लेकिन एक चीज है जो हम आपको दे नहीं सकते और वो पाक रूह है, ये सिर्फ खुदा ही देता है। लेकिन अगर आप अपनी जरूरत को महसूस करते हैं और खुदा आपके दिल से बात कर रहा है कि आपको उसकी जरूरत है और आप चाहते हैं कि हम आपको दुआ में याद रखें, तो क्या आप खड़े हो जाएंगे ताकि हम देख सकें कि आप कौन हैं? खुदा आपको बरकत बख्शे। जरूरत है, खुदावंद आपको बरकत दे। मेरा ख्याल है कि शायद यहाँ 150 के करीब लोग उठ खड़े हुए हैं। हो सकता है अगर मैं दुरुस्त तौर पर देख रहा हूँ तो ऐसा ही है। अब मैं नहीं जानता कि कमरे के अंदर और इर्द गिर्द और बाहर की तरफ कितने लोग हैं जिन्होंने अपने हाथ उठाए हुए हैं और वगैरह वगैरह, लेकिन आपकी एक जरूरत है, अब आए दुआ करें। अब आप लोगों में से जो लोग अपने नजदीक खड़े होने वाले अशखास को देख रहे हैं तो वो मसीह के सामने बतौर गवाह खड़े हैं। खुदावन, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। मेरा एतकाद है कि आज रात मैं उन लोगों में से एक हूँ जिनके नाम इन मोहरों में बनाए आलम से पेशतर लिखे गए थे। ऐ खुदावन, किसी चीज ने मुझको चोट लगाई है और अब मैं यहाँ खड़ा हूँ। क्या ये मैं ही हूँ? क्या तू मुझे पुकार रहा है? मैं चाहता हूँ कि तू मुझ पर जाहिर कर दे कि मेरा नाम वहाँ मौजूद है। मुझे रूह कुदस के जरिए भर दे और अपने में मोहर बंद कर ले। आप लोगों में से जितने पहले ही मोहर बंद हो चुके हैं, मैं चाहता हूँ कि आप खड़े हो जाएं और उनकी तरफ मुंह करें और अपने हाथ उन पर रखकर दुआ करें। अब आप बिल्कुल संजीदा हो जाएं, ऐ आसमानी बाप, खुदावन यीशु के नाम में जोर की आंधी की मानिंद अजीम पाक रूह इस जमायत पर नाजिल हो और ऐ खुदावन यहाँ हर एक दिल को पुकार और रूह कुदस के बपतिस्मे को इन पर नाजिल कर, क्योंकि पानी इंतजार कर रहा है। जब पतरस ये बातें कह ही रहा था कि रूह कुदस उन पर नाजिल हुआ जो कि कलाम सुन रहे थे और वो सब रूह कुदस से भर गए।